प्रातः क्लास चल रहा था, एक चार 1967 शनिवार को पांचवें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी, गॉड को परिचय देना होता है। गॉड तो भगवान, हिंदी में कहते हैं भगवान, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। तो गॉड का परिचय क्यों कहा? क्योंकि गॉड अक्षर में, गॉड शब्द में तीन अक्षर हैं जिनके तीन अर्थ हैं। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रक्टर। हिंदी में इनको कहते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो तीन मूर्तियों का परिचय देना है या एक का परिचय देना है? 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 तीन का परिचय देना है, तीन में एक ही है। एक कौन है? है? तीनों में एक शिव बाबा है। वाह भाई, तीनों में एक शिव बाबा है। ब्रह्मा में शिव बाबा है। अरे बताओ जल्दी जल्दी, ब्रह्मा अभी तो कहा, तीनों में एक ही। ब्रह्मा में शिव बाबा है, अब्बल नंबर ब्रह्मा में शिव बाबा है। अगर कहें कि ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसमें 100% सहनशीलता हो, अम्मा, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़े से बड़ी अम्मा। तो कहें कि ब्रह्मा ही शिव बाबा है, अरे कहें क्यों? हाँ, कहेंगे सहनशीलता वाली माँ का पार्ट है, लेकिन ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। कौन से ब्रह्मा के लिए कहें कि सहनशीलता वाली माता है संसार की, जैसे बड़ी से बड़ी, किसको कहें? दादा लेखराज ब्रह्मा को कहें? अच्छा, दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा यज्ञ के आदि में जब धोबी घाट की बात फैली संसार में, बवंडर खड़ा हो गया ना, तो दादा लेखराज ब्रह्मा डटे रहे या चौकड़ी मार के कराची भाग गए चुपचाप? तो सहन किया? हा? नहीं, तो कहें उनमें 100% सहनशीलता थी। अच्छा चलो आज की बात छोड़ दो, जब उनके शरीर का अंत हुआ तो किस बात से हुआ? उनका जो शरीर से पार्ट था वो पार्ट का अंत कौन सी बात से हुआ जो शरीर ही छूट गया? बताओ बताओ। है नहीं, हार्ट फेल हुआ। क्यों हार्ट फेल किस बात से हुआ? है हाँ, उनको ये दुख पैदा हो गया, अति का दुख हो गया कि जिन बच्चों की मैं इतनी पालना की उन बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा और इन्होंने तो उसको रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लिया, मेरा नाम ही उड़ा दिया। तो ये बात वो सहन नहीं कर सके, शरीर ही छूट गया। क्योंकि समझते थे कि ऊंचे के ऊंचा जो शिव बाप है उसकी प्रॉपर्टी का मैं ही अब्बल नंबर हकदार, और संसार में मेरा ही नाम गाया जाएगा। गीता का भगवान है कृष्ण, तो ये तो सारी बात फेल हो गई। चलो दादा लिख ब्रह्म लिख राज ब्रह्मा न सही ब्रह्मा अब्बल नंबर, तो फिर किसे कहें? हैं परम ब्रह्म को कहें? जो ब्रह्मा सो अब्बल नंबर विष्णु बनता है उसको भी न कहें? है? अच्छा जो पहले नंबर में ब्रह्मा नामधारी हुआ उसको कहें, क्योंकि शिव बाप ने ब्रह्म वाक्य में बोला कि मैं अकेला नहीं आता हूं। हैं? किसके साथ आता हूं? तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। तो तीन मूर्तियों में वो पहली मूर्ति कौन सी जिसमें प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम पड़ा, और उस ब्रह्मा का पहला पुत्र ब्राह्मण बना, ब्राह्मण चोटी कहा गया। क्या कहा गया? ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण सबसे ऊंचा। तो वो चोटी का ब्राह्मण किससे पैदा हुआ? ब्रह्मा से पैदा हुआ ना, ब्रह्मा का बच्चा कहें ब्राह्मण। जो भी नंबर बार ब्राह्मण होते हैं उनमें अव्वल नंबर ब्राह्मण, ठीक। तो वो हुआ जिसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके उसका नाम दिया ब्रह्मा। मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो किस आधार पर ब्रह्मा हुआ? क्या काम करने के लिए है? सामना किया। दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए थे ना, उन साक्षात्कारों को भागीदार के सामने सुनाने की हिम्मत दादा लेखराज ब्रह्मा को भी नहीं हुई। और उन्होंने कलकत्ते में अपनी बड़ी बहन को बताया, उसमें भी हिम्मत नहीं थी। कि दादा लेखराज जो बुद्धिवादी था, कहें कि इस दुनिया में दादा लेखराज ने और उनकी बड़ी बहन, ये तो बड़ी बहन को भारत में समझते हैं कि जैसे बड़ा भाई बाप समान, वैसे बड़ी बहन माँ समान। तो उसको भी हिम्मत नहीं हुई, उनके साक्षात्कारों की बात जाकर के भागीदार को सुनाए, क्योंकि वो तो थी ही भागीदार की पत्नी। और पत्नी तो अपने पति से ही प्रभावित होती है, तो क्या बड़ी बात हो गई? प्रभावित माने प्रजा। तो न दादा लेखराज को हिम्मत पड़ी, न उनकी बड़ी बहन को हिम्मत पड़ी, तो बड़ी बहन ने अपनी सहेली को बता दिया। जो सहेली बड़बोली थी, बोलने में बड़ी होशियार, तो उसके कान में बात पड़ी तो उसने तो हिम्मत कर ली। क्या हिम्मत की ना? और जिसने हिम्मत की उसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में क्या है? हिम्मत है बच्चे मदद बाप। तो शिव बाप ने उस बच्ची को हिम्मत दे दी। और बच्ची ने सुना दिया उन साक्षात्कारों की बात को भागीदार के सामने। तो इसमें हिम्मत ही की क्या बात है? सुनी हुई बात को किसी के सामने सुना देना, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई हिम्मत की बात है? 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 क्या
जो
की तो सुनाना। हाँ, जो की तो ही सुनाना, कुछ मिक्स करके थोड़े ही सुनाया।
और कोई जो हुआ साक्षात्कार को सुनाना
नहीं, ये साक्षात्कार होना, ये स्वप्न होना, ये अंधश्रद्धा की भक्ति की बात है या बुद्धिवादी के प्रूफ और प्रमाण की बात है? भक्ति की बात है। तो ब्रह्म वाक्य मुरली में सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई। मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर थोड़े ही चलना चाहिए, बुद्धि से फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उस माता ने हिम्मत ये कर ली कि जिस बुद्धिवादी भागीदार से, जो ब्रह्मा बाबा का दुकान में 10 साल से भागीदार था, अच्छा विद्वान था, बुद्धिवादी था, तो कोई की बात को, अंधश्रद्धा वाली बात को तो वो मानने वाला नहीं। तो न ब्रह्मा बाबा की हिम्मत पड़ती कि मैं उनको सुनाऊं मुझे साक्षात्कार हुआ, कहे क्या प्रूफ तुमको साक्षात्कार हुआ, ऐसे ही तुम सुना रहे अपना प्रभाव जमाने के लिए। तो उस माता ने हिम्मत की और सुना दिया ब्रह्मा बाबा को, जैसे जैसे, जैसे साक्षात्कार हुए थे वो बातें सुना दी। और ये तो है कि सुनने वाला सुनने के साथ साथ समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है? तो भागीदार ने साक्षात्कारों की बात को सुना और उसी क्षण शिव बाप ने प्रवेश करके समझा दिया। शिव बाप जैसे में प्रवेश करते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं चलता, कब आया कब चला गया। ब्रह्म वाक्य है, इन ब्रह्मा को पता चलता है, दादा लेखराज ब्रह्मा को भी नहीं पता चलता था कब आया कब चला गया। ये भी पहचान है क्या? वो निराकार शिव ज्योति बिंदु की ये पहचान है क्या? क्या पहचान? कि कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, जिसमें आता है उसको भी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। अरे ये पॉइंट मेरी बुद्धि में था ही नहीं, ये मैंने कैसे सुना दिया। तो फिर विचार चलता है कि जरूर कोई हस्ती है जिसने प्रवेश किया और ये बात बताई। लेकिन इस तरह की बातें नई बात है, ये नई नई बातें दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सुनाई थी। तो निश्चय पक्का हो जाता है कि सिवाय भगवान के और कोई नहीं हो सकता। तो ठीक है, भागीदार ने सुना और सुनने के साथ साथ समझा, और जो सुना और समझा उसके हिसाब से क्लेरिफिकेशन दे दिया साक्षात्कारों का कि ब्रह्मा वाली आत्मा को सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, इसलिए इनको ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना है संसार के सामने। क्या संसार के सामने ब्रह्मा का पाठ बजाना है? सवाल है कि संसार के सामने ब्रह्मा का पाठ बजाना है? संसार झूठा या संसार सच्चा? जिस संसार को मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा कौन और ब्रह्मा के कुमार कुमारी ब्राह्मण कौन, क्योंकि सारी संतान, सारा संसार किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान। तो सारे संसार की बुद्धि में यही बैठेगा, वो जो सफेद पोष रूप है वो ब्रह्मा है, जिसका सारा संसार ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण बनता है तो कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाने वाला देवता बनता है। क्या बनता है ना? एक जन्म के लिए दिव्य जन्म जरूर लेता है। तो ठीक है, 500 करोड़ ने जाना कि यही ब्रह्मा है, लेकिन जिस 500 करोड़ ने जाना कि ये ब्रह्मा है तो उसने सही जाना या झूठ जाना? क्यों? वास्तव में तो दादा लेखराज ब्रह्मा नाम तो तब से पड़ा जब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। कब से पड़ा है? कब से पड़ा? अरे बोलते जाओ धड़ाधड़, जो हिंदी जानते हैं वो तो बोलो। हैं? 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, उससे पहले तो ओम मंडली नाम था ना? क्या नाम था? ओम मंडली। ओम मंडली का अर्थ ही है आ उ मा। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश, तीनों की मंडली। क्या जैसे गांव में कोई साधु संत महात्माएं आते हैं तो एक ढोलक बजाता हुआ आता है, एक चिमटा बजाता हुआ आता है, एक मजीरा बजाता हुआ आता है, कहते हैं महात्माओं की मंडली आई है। छोटे से संगठन को मंडली कहा जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो नाम बाद में पड़ा, पहले तो उन आत्माओं में जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो इकट्ठी हुई थी उनका नाम पहले ओम मंडली में था। तो ओम मंडली का अर्थ ही होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो कोई दूसरे थे। जो ब्रह्मा जिसने हिम्मत की साक्षात्कारों को सुनाने की, ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा में मूल गुण होता ही है। क्या है? संहिता तो होती है सुनना और सुनाना। ब्रह्मा क्या करता है? अम्मा करती है सुनना और सुनाना, उतना ही ज्ञान सुनाती है जितना सुना है कान से दुनिया में, उतना ही सुना देती है बाल बच्चों को। क्योंकि भारत की माताएं बहुत ऊंची पढ़ाई तो नहीं पढ़ती थी पहले, पढ़ती थी हैं? क्यों? क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई लिखाई तो जो पेट का धंधा करते हैं वो अपने परिवार की परवरिश के लिए पढ़ते हैं। माताओं को तो क्या करना है, घर बार संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है, उसके लिए बहुत ऊंची पढ़ाई की जरूरत है, है? ब्रह्म वाक्य है, मुरली में बोला कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा मारने की दरकार ही नहीं। तो भगवान ने जैसा सुनाया वैसा भारत की कन्याओं माताओं ने फॉलो किया। क्या किया? बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ती थी? पढ़ती ही नहीं थी। अरे कोई नई बात सुना रहे क्या? पढ़ती नहीं थी, जानती थी हमें तो घर बार संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है, परिवार की वृद्धि करनी है, तो किया। तो उन माताओं में पहली पहली माता कौन सी हुई जिसने सुना और सुनाया? कौन सी माता हुई पहली? हैं? हाँ, तीन मूर्तियों में से जिसमें प्रवेश करके शिव बाप ने सुना और सुनाया का काम किया, सुनने और सुनाने का काम किया। मोस्टली भारत की माताएं आज भी वो ही धंधा कर रही हैं। क्या है? दुनिया में जो बातें सुनी हैं परंपरा में वो बातें बच्चों को सुनाती रहती हैं, कहानियां। ज्यादा अकल नहीं चलाती है? ज्यादा अकल चलाती हैं ना? ज्यादा अकल चलाती हैं? उन्हें ज्यादा कोई धंधा दोरी करना नहीं है, माथा मारी परिवार के ढेर से ढेर बच्चों की पालना करने के लिए धंधा दोरी करें, नौकरी करें, ये करें वो करें, नहीं। क्योंकि जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो तो भगवान है, और जिसके पास महान ते महान बुद्धि है, बड़ा ही बुद्धिमान, दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, जितना उसमें ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञानी कोई बुद्धिमान कहा जाता है। तो वो स्वयं ये चाहता होगा कि मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान कोई निकले, है? बोलो। वो तो ड्रामा में है ही नहीं, ड्रामा में यही नूद है कि बुद्धिमानों की बुद्धि, वो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। गीता की किताब तो आई कि नहीं घर में, हैं? उसमें लिखा हुआ है कि श्लोक, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से प्रबल मन है, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है, मनुष्यों की बुद्धि जो है पुरुषों की बड़ी प्रबल है, है कि नहीं है? देखो आज के पुरुषों ने एटम बम बना लिए, है? इधर से बटन दबाएं और उधर कोई देश का देश स्वाहा कर दे, एक सेकंड में बटन दबाते दबाते कोई बड़े से बड़े देश की राजधानी को ध्वंस कर सकते हैं। कमाल की बुद्धि है। तो मनुष्यों की बुद्धि जो है वो मन से भी जास्ती प्रबल है। फिर मन से प्रबल मनुष्यों की बुद्धि है और मनुष्यों के बीच में कोई तो प्रबल होगा, मनुष्यों के बीच में वो कौन प्रबल पुरुष है जो सब मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा प्रबल है? हाँ, मन से भी ज्यादा है। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनीषी हुए हैं, उन सबसे ज्यादा प्रबल है जिसकी बुद्धि है, कोई तो एक होगा कि सब होंगे? एक होगा। तो वो एक ऐसा है कि जो एटम बम बनाने वाले हैं, वो एटम बम तो बना लेते हैं। क्या हम कोई भी देश को ध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे? जैसे आज एक देश है उत्तर कोरिया, क्या छोटा सा देश है, कैसे छोटा सा देश, वो तो दुनिया की बात हो गई, दुनिया के अंदर। भारत में भी ऐसा ही एक छोटा सा देश है, अभी तो नहीं है, पहले भारत में ही था, ये जो नेपाल पाकिस्तान लंका जो है ना, ये तो बाद में अलग हुए, बांग्लादेश वगैरह, लेकिन पहले ये सब मिलकर के एक ही बड़ा हिंदुस्तान था, भारत वर्ष। तो इन सब के बीच में एक छोटा सा देश है, जैसे दुनिया के उत्तर पूर्व में कोरिया है, दुनियावी तरीके से वो आज संसार के सब देशों को दहला रहा है। अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, नहीं देखा? माता हूं माता, बच्ची माता मारने से क्या होता है? अपने बाल बच्चे पाले, रोटी दाल बनाए, खेला है? तो कोई कोई ने तो देखा होगा है, कोरिया एक देश है, उत्तर कोरिया, तो वो दुनिया के उत्तर पूरब में है। कहाँ है? उत्तर पूरब में। और जो भारत में है तो भारतवासी मानते हैं कि दुनिया की 8 दिशाएं हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके 4 कोने हैं। हाँ, तो उन 8 दिशाओं में जो उत्तर पूर्व का कोना है, उस दिशा का जो अष्ट देव है वो बड़ा प्रबल है, है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, इंडिया। हाँ, याद आया, उसका नाम है भूटान, बहुत छोटा सा देश। जैसे सिक्किम है ना, छोटा सा प्रदेश, ऐसे ही उसके पूरब में, भारत के उत्तर पूरब में समझ लो एक देश है भूटान। भूटान बिगड़ा हुआ शब्द है, सही शब्द है ब्रूटान। ब्रू माने भौं, और जब किसी को गुस्सा आती है तो कहता है ब्रू माने टान, तान दिया, ब्रकुटी तान दी। ये तो दक्षिण भारत है, यहाँ रामायण तो पढ़ते ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया में रामायण बहुत पढ़ते हैं। तो उसमें एक चौपाई आई है रामायण की, वृत्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर ही किसोई। मतलब जिसकी भ्रकुटि तानने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। हाँ, उसके ऊपर क्या संकट आएगा। चौपाई का अर्थ है। तो अब बताओ, भारत में कोई देवता है? हाँ? वो कौन सा देवता है कि आज के जो वैज्ञानिक वो तो अहंकार करते हैं, हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना के रखे हैं कि दुनिया को चुटकी में नष्ट कर दे। लेकिन वो डिंग मारते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज तैयार कर ली है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज बना ली तो उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आज से 70-72 साल पहले 1945 में जैसे आज के बच्चे खेलते हैं ना, बम फटाके छोड़ाते हैं दीपावली पे, ऐसे उन्होंने 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनाई थी वैज्ञानिकों ने। हाँ, और जापान के दो बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। और आज उन्हीं वैज्ञानिकों ने हजारों हजार वाट के एक एक देश में ढेरों बॉम्ब बना के रखे हुए। कितने साल हो गए? अरे वो 20-20 मेगावाट के बनाए हुए कितने साल हो गए? 70 इयर्स। और अब 70 साल के बाद उनके पास हजारों हजार मेगावाट के बॉम्ब पड़े हुए हैं, एक एक देश में कई कई, गिनती ही नहीं है किसी के पास। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है क्या कि उनका विस्फोट कर दे। तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं कि इस दुनिया में हम ही बड़े ताकतवर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का एक वैज्ञानिक है जो इतना बड़ा विज्ञानवादी है, कि तुम तो बम्ब बना बना के रखे हैं, उसके पास जो योग बल का परमात्म बम्ब है वो इतना बड़ा तैयार हुआ पड़ा है कि तुम्हारे बम्बों को, बम्बियों को, सारे देश में जितनी बनाई हुई रखी है सब का ध्वंस हो जाएगा, सारी दुनिया ही ध्वंस हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। उसकी यादगार है ब्रूटान। क्या? भूटान। और उसका इतना अच्छा संगठन है यूनिटी, उस देश का, छोटा सा देश, उसका इतना अच्छा यूनिटी, अच्छी यूनिटी है कि उसके राजा ने देखा कि सब देशों में, दुनिया में प्रजातंत्र राज्य पसंद कर रहे हैं, तो हमारी प्रजा को कहीं दुख न हो जाए, कि हमारा राज्य क्यों नहीं, हम भी तो अपने देश की प्रजा हैं। तो उसने खुशी खुशी सबको बताया प्रजाजनों को, तुम अपना राज्य बनाओ, प्रजातंत्र चलाओ, मैं भी उस प्रजा में प्रजा बन के रहूंगा। लेकिन उस देश की प्रजा ने माना ही नहीं। राजा का डायरेक्शन था प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं जैसे और देशों में चलाते हैं, लेकिन फिर भी वहां की प्रजा अपने राजा रानी को ही मानती है और किसी को मानती नहीं। बताओ दुनिया के कोई भी देश में वहां का शासन, दुनिया का कोई भी देश का ऐसा शासन राज्य नहीं है जहां इतनी अच्छी यूनिटी हो। एक के अंडर दी कंट्रोल चलने वाली प्रजा, वहां अभी भी ऐसा है। तो वो कहां की यादगार है, है? है? हाँ, जो चार युगों का ये ड्रामा है ना, बड़ा ड्रामा, इस ड्रामा की जब शूटिंग पीरियड होता है, उस शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग में वो प्रत्यक्ष हुआ था जिसकी यादगार भूटान दिखाई गई। सूर्यवंशी राजा सूर्य के समान, ज्ञान सूर्य का हो, जिसकी ज्ञान की रोशनी इस दुनिया की 500-700 करोड़ सारी मनुष्य आत्माओं ने स्वीकार कर ली थी। और जिन्होंने दो चार रहे नहीं स्वीकार की, कोई कोई हठीले होते हैं, नहीं मानते। जैसे इस दुनिया को चलाने वाले धर्म पिताए हुए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, तो क्राइस्ट जैसे तो बड़े ग्रेट फादर्स हो गए दुनिया में, दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं, मानते ही नहीं, वो तो बड़े दबंग, वो तो सहज नहीं मानेंगे। क्या क्या सहज नहीं मानेंगे कि दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसको सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर हो जाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर धर्म के फॉलोअर्स हजारों साल से अपने धर्म पिता को मानते आए और वो उन धर्म पिताओं को छोड़ देंगे, जैसा ब्रह्म वाक्य है। क्या याद आया ब्रह्म वाक्य? मुरली में एक वाक्य आया है, नहीं याद नहीं रहा? अरे है? अरे बोला है, मारो इन देहधारी गुरुओं को गोली। क्या बोला? और गीता में भी वो वाक्य आया है, याद आया? क्या गीता में भी एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सात धर्मों को मारो गोली, त्याग दो, लात मार दो, तक सब धर्म वालों ने, धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को रौरव नरक बना के रख दिया। उनके मुंह पे बोल दो, क्या बोल दो, उनके मुंह पे बोल दो, थूक दो, तुमने और तुम्हारे फॉलोअर्स ने इस दुनिया को क्या बना दिया, रौरव नरक बना दिया, हेल बना दिया, बाघ बना दिया। हमको स्वर्ग बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया, क्या बोल दो, क्या बोल दो, हमको हेवन बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया। और वो हेवनली गॉड फादर बताता है कि हेवन तो मैं जो बनाता हूं वो बहुत छोटा होता है और हेल नरक, नरक की दुनिया बहुत बड़ी होती है। मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाकर जाता हूं, क्या बना के जाता हूं, स्वर्ग। तरीका भी बताता है, मैं सदैव इस दुनिया में आकर भी स्वयं स्थिति में स्थित होकर रहता हूं। स्व माने आत्मा, ज्योति बिंदु, जिस आत्मा की यादगार भारत की माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। कौन? भारत की कन्याएं माताएं उस आत्मा की यादगार आज भी बिंदी लगाती हैं। उन्हीं माताओं को, कन्याओं को जिन्होंने आज तक नौरव नरक की दुनिया में भी मेरी बताई हुई बात पर इतना ध्यान दिया, क्या, कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। उन्हीं कन्याओं माताओं को मैं ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, क्या, कि तुम कौन हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और माताओं को भी कन्या बना देता हूं, क्या कहा, माताओं को कन्या बना देता हूं। कोई कहे अरे माताएं तो ऐसे ही पुरुष लोग पतित बना देते हैं, उनको क्या ऊंचा उठाओगे, तो वो कहता है, वो क्या कहता है, मैं सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला माताओं को ऐसा ज्ञान सुनाता हूं जिससे वो सदा स्वयं स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करने में पक्की हो जाती है। इसलिए वो कन्याएं माताएं मेरे साथ हेवन अर्थात स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बन जाती है। कौन? कन्या माता। मैं जिस तन में आता हूं वो नर तन में आता हूं, कन्या माता में नहीं आता हूं। तो जिस नर तन में आता हूँ वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग नहीं बनाता। क्या कि मैं जिस तन में आऊं वो इस दुनिया को प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाए तो पर्सनलिटी हो जाए कि मैंने जिसके संग का रंग लिया, संग का रंग दिया तो आसक्ति हो गई, उसके द्वारा स्वर्ग बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं जिस नर तन में आता हूं उस नर तन के द्वारा ये साबित कर देता हूं। क्या क्या साबित कर देता हूं कि नर नरक बनाता है। क्या नर क्या बनाता है? और सबसे बड़ा नरक वो ही बनाता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। नरक कैसे बनता है? अपवित्रता से नरक बनता है, विविचार से नरक बनता है, और पवित्रता से स्वर्ग बनता है। दुनिया की दूसरे देशों की कन्याएं माताएं वो पवित्रता को धारण नहीं करती जीवन में कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, मेरा तो एक पति परमेश्वर है दूसरा न कोई। ये दुनिया की जो विदेशी औरतें कन्याएं माताएं हैं वो इस गुण को धारण नहीं करती, लेकिन भारत की कन्याएं माताएं इस गुण को धारण करती है। क्या? इसलिए उन कन्याओं माताओं को मैं टाइटल देता हूं भगवान की गऊएं। जानवरों में गऊएं बड़ी सीधी सादी स्वभाव की होती है, गऊओं को जिस खूंटे से बांधो जीवन भर उसी खूंटे से बंद कर रहती है, जहां मालिक बांधे पालने वाला। ये मिसाल दिया, बाकी भगवान बताता है मैं कोई जानवर गऊओं को पढ़ाने के लिए नहीं आता हूं, उनकी पालना करने के लिए नहीं आता हूं, मैं तो ह्यूमन गऊओं को पालने के लिए आता हूं। भारत की खास कन्याओं माताओं को पालना देने के लिए आता हूं, जिन कन्याओं माताओं ने जन्म जन्मांतर, क्या जन्म जन्मांतर स्वर्ग से लेकर के रौरव नरक दुनिया जब तक बनती है तब तक भी मेरे आदेश का पालन किया, चलो शुद्ध रूप में पालन नहीं कर सके कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, फिर भी यादगार तो कायम रखी ना। तो ये भारत की कन्याएं माताएं गऊएं हैं, गऊएं कैसी गऊएं? इन कन्याओं माताओं को, भारतीय कन्याओं माताओं को जीवन में कोई भी जन्म में देख लो, माता पिता ने जिस खूंटे से बांध दिया जीवन में, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रही। हिस्ट्री की बात है, क्या हिस्ट्री के बाहर की बात छोड़ दो, हिस्ट्री 2500 साल की मनुष्यों के पास है, मनुष्यों से हिस्ट्री में जो मनुष्यों ने बनाई है उस हिस्ट्री में देख ले हजारों साल से, कि भारत की ये गौएं भगवान की ये गौएं, इतने सीधी साधी स्वभाव की रही। गौ स्वभाव दूसरों को दुख देता है या गौ सुख देती है? है? गौ सुखदाई है, उसमें भी खास भारत की गौएं तो सुख ही सुख देती हैं परिवार को। कितना सुख देती है, जीवन में कन्या है तो मात पिता के कंट्रोल के अंदर रहती है, कन्या से नौजवान बनती है तो पति और पति के परिवार के कंट्रोल में रहती है। और जब खुदान खास्ता पति शरीर छोड़ दे या कहीं चला जाए, सन्यासी होके चले जाते हैं ना, तो भी परिवार को सुखदाई बन करके रहती है। और इसका मिसाल है शास्त्रों में, जो बड़े से बड़ा शास्त्र माना जाता है महाभारत, उसमें एक माता है जिसने ये मिसाल कायम किया कि परिवार की वृद्धि के लिए परिवार के साथ ही जीवन भर रही, भले पति ने शरीर छोड़ दिया। बच्चे दर बदर हो गए तो भी परिवार का नाम बाला करने के लिए परिवारजनों के साथ रहे। याद आया है कुंती, पति ने शरीर छोड़ दिया पांडव, जिसे बाबा कहते हैं पांडव पंडा बाप, पांडवों का बाप, पंडे का बच्चा पांडव। उनको परिवार वालों ने देश निकाला दे दिया, किसको? पांडवों को। पांडवों ने कहा भी मां को चलो हमारे साथ, मना कर दिया, नहीं मैं अपने परिवार की पत नहीं गवा सकती, मेरे पति का परिवार है। लोग पति मर गया, पति की लाज रख रही है। यानी ये भारत की माताओं की ऐसी स्टेज रही एक के ऊपर जीवन भर कायम रहने की, कि पति चला जाए जीवन भर के लिए, पति शरीर छोड़ जाए तो भी पति के ही गुण गाती रहती है, दूसरी शादी नहीं करती। एक के ऊपर इतनी आस्था गहरी, कि मेरे ससुर घर की लाज न जाए और मात पिता की भी लाज न जाए, मात पिता का भी नाम बाला करने वाली धोखा नहीं दे सकती। मात पिता ने दान दिया तो दान दी हुई जो चीज है वो अच्छे से कामयाब हो वो अच्छा, या नकामी हो जाए वो अच्छा है। कामयाब होकर रहे तो दोनों तरफ की लाज बचाई। भारत की कन्याओं माताओं ने कौन कौन से कुल की, ससुर कुल और मात पिता का कुल, दोनों की लाज रखी, कभी धोखा नहीं दिया। ससुर कुल को भी धोखा नहीं दिया और मात पिता को भी धोखा नहीं दिया। और आज जो मनुष्य हैं इस संसार के, जिन्हें नर कहा जाता है, नारी नहीं, क्या कहा जाता है, नर, वो ऐसे हो गए कि आज दुनिया में विदेशों की तो बात छोड़ दो, विदेशियों से प्रभावित होकर के भारत की कन्याओं माताओं की ये हालत कर दी कि जितनी कन्याएं माताएं दुखी हो रही हैं, बंधन में हैं पुरुषों के, नर के जितने बंधन में हैं, इतना बंधन में कोई मनुष्य नहीं होता। खास करके माताएं, कैसी बंधन में, वो बड़े से बड़े त्यागी हैं, बचपन में माँ बाप की होकर रहती है, सब कुछ माँ बाप का, कुछ नहीं मेरा, बड़े होकर पति और पति के कुल की रहती, सब कुछ पति के कुल का, परिवार का, कुछ नहीं मेरा, बाल बच्चे भी परिवार के पति के, और जब वयोवृद्ध बूढ़ी हो जाती है तो भी भारत में ये परंपरा रही है, भगवान के आने से पहले तक, कि भारत की माताएं बूढ़ी होने के बावजूद भी परिवार की संपत्ति की हकदार नहीं बनी। क्या परिवार की सारी संपत्ति बच्चों को सौंपी है, गलत बात तो नहीं है, इतनी त्यागी बनकर सारा जीवन रही। आज उन कन्याओं माताओं का भारत में कोई मान नहीं रहा, मनुष्य गुरुओं ने जो परंपराएं बनाई ऐसी भ्रष्ट परंपराएं बन गई कि हर देश की बात छोड़ दो, खास भारत में, भारत के नर पुरुष आज कन्या को घर की माता बनाते हैं और कल लात मार के बाहर निकाल देते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, करती है, है? नहीं। माता को इंसान नहीं समझा, बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया। जैसे मशीन पुरानी हो जाती है, कबाड़े में डाल दी, कोई उसका धनी धोरी नहीं, कोई उसका रक्षक नहीं। ऐसी जब दुनिया हो जाती है तब वो कन्याओं माताओं का सुरक्षा करने वाला बड़े से बड़ा भगवंत इस सृष्टि पर आता है और नई दुनिया बनाने के लिए जिस पुरुष तन में भी प्रवेश करता है तो भी उस पुरुष तन से पहले पहले नई दुनिया बनाने का काम करने के लिए नाम देता है ब्रह्मा। किसी भी पुरुष तन में भी प्रवेश करेगा तो भी नाम क्या देगा? ब्रह्मा। कितनी बड़ी पोस्ट देता है इस दुनिया में आकर। ये भी बताया कि माताएं, खास करके भारत की माताएं, माता बनने से पहले इतनी बड़ी मान मर्तवा वाली कन्या होती है कि दुनिया के जो भी बड़े से बड़े संत महात्मा सन्यासी होते हैं वो भी उसके पांव पूजते हैं। किसके? कन्याओं के। किस आधार पर? उसके अंदर पवित्रता होती है। विदेश की कन्याओं की बात छोड़ दो, भारत की कन्याओं माताओं में ये अभी भी परंपरा है कि कन्या के माँ बाप भी, परिवार के गुरुजन भी नवरात्रों में कन्याओं को इकट्ठा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इतना महत्व हंस रही है। तो देखो माताओं को एहसास दिलाया कि तुम कन्या थी तो तुम्हारा इतना महत्व था और जब से तुम माता बनी तब से जिस परिवार में गई उस परिवार में सबके माथा टेकती हो, सबके पांव पड़ने पड़ते हैं। जिस पवित्रता के लिए भगवान ने इतना मान मर्तबा दिया कन्याओं माताओं को कि कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। क्या? कौन खोलती? कन्याएं माताएं ही गेट खोलती। माताओं में भी वो माता जो पहले पहले भगवान को अपना अव्वल नंबर का पति मानकर रहती प्रैक्टिकल जीवन में, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नको। वाचा से भी एक का गायन, दृष्टि से भी एक को देखना, क्या देखते हुए भी उसको न देखना, एक को देखना। जो भी शरीर की कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों का भी संग बुद्धि से एक के साथ करना, और प्रैक्टिकल में भी ऐसी कन्या का जीवन बिताना जीवन भर कि एक के अलावा इंद्रियों का कोई के साथ संबंध न हो सके, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। तो कन्याओं माताओं के बीच ऐसी कन्या को सबसे आगे रखता, किस बात में, स्वर्ग का गेट खोलने में, बाकी सब नंबर वार। जितना जो जीवन में एक के साथ निभाता है निभाती है, मन से बुद्धि से दृष्टि से वृत्ति से एक ही बनकर रहती, पाठ ही ऐसा पढ़ाते भगवान आकर, एक शिव बाबा दूसरा नको। तो ऐसी कन्याएं माताएं जो भगवान के साथ स्वर्ग का गेट खोलती है, उनका नाम उनकी मुखिया माता के नाम रखा जाता है, भारत माताएं। तो अव्वल नंबर कोई भारत माता होगी या नहीं होगी? तो जो अव्वल नंबर भारत माता है, जिसने अव्वल नंबर की प्योरिटी जीवन में धारण की, वो अव्वल नंबर माता नारी से लक्ष्मी बनती है। क्या बनती? लक्ष्मी बनती है। माने माता बनती है या कन्या ही रहती है? क्या बन गई? क्या बन गई? माता बन गई। भले माता बन गई, लेकिन एक की बन के रही तो माता, या दो चार आठ की बनी, एक के बन की रही तो पक्की माता। और माता है तो माता में दो हैं, अरे हर माता में दो है, क्या मतलब है? हर माता के अंदर जगत माता है, हर माता के अंदर दो शक्तियां हैं, एक मन बुद्धि की शक्ति आत्मा और दूसरी पांच तत्वों की शक्ति देह। क्या खास करके भारत माताओं में, भारत की कन्याओं में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, जिसकी आत्मा भी पवित्र है, जिसका शरीर भी पवित्र है, उसको टाइटल भारत में दिया जाता सती। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली। बेहद का सत्य है सच्चाई, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य का ज्ञान या झूठ का? सत्य का ज्ञान। तो जिस माता ने या कन्या ने अपने जीवन में जो सत्य अकाल कहा जाता है, उस सत्य भगवान के सत्य को, ज्ञान को प्रैक्टिकल इंद्रियों में धारण किया, क्या मेरा तो एक, चाहे ज्ञान इंद्रियों से भी एक, कर्म इंद्रियों से भी एक, और मन बुद्धि से भी एक, दूसरा न कोई। तो ये डायरेक्शन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंतात्मा का, परम पुरुष का डायरेक्शन है। पावन दुनिया की तो बात छोड़ दो, क्योंकि पावन दुनिया खत्म हो गई, गुजर गई। इस पतित दुनिया में भी विशेषता बताई किसकी? कन्याओं माताओं की, भारत की माताओं की ये विशेषता बताई। इस पतित दुनिया में भी पतित तो बनना है, क्योंकि पावन दुनिया में भी देवताएं पतित बनते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती है। तो पतित दुनिया में क्यों नहीं पतित बनेंगे? तो पतित दुनिया में पतित तो बनना है सबको, ए टू जेड सबको पतित बनना, परंतु एक के साथ पतित बने। अगर ऐसे जीवन में करती हैं तो वो सती हैं, सत्य को धारण करने वाली। क्या है? सती, सत्य को धारण करने वाली। और वो सत्य को धारण करने वाले पुरुष सती नहीं बन सकते, उनको कोई नहीं कहता सता। कन्याओं माताओं को टाइटल मिलता है क्या? सत्य को धारण करने वाली सती। और ऐसी वैसी सती नहीं, सत्य को धारण करने वाली ऐसी सती कि वो अगर सत्य को धारण करने वाली है जीवन भर, तो कोई राक्षस जैसे मनुष्य की पत्नी बनकर के भी भले रहे, जैसे जालंधर राक्षस की पत्नी का नाम वृंदा, तो भी उस सती में इतनी ताकत रहती है कि दुनिया में जिसे भगवान कहा जाता, खास भारत में शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, उनका परिवार उनका छोटा बड़ा बच्चा हो, छोटा बड़ा कोई भी सहयोगी हो, सब मिलकर के उस जालंधर राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। युद्ध में उसे क्या, युद्ध में जालंधर राक्षस को भगवान भी हरा नहीं पाता। ऐसी सत्य की विकराल शक्ति धारण करने वाली कन्या बन जाती है, बलि माता कही जाती है। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है क्या, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ वाक्य कि मैं कन्याओं को माता बनाता हूं। क्या कन्याओं को सत्य की शक्ति धारण करने वाली माता बनाता हूं। वो सत्य की शक्ति कहां से आती है जो धारण करती है, है? पति से आती है। वो शक्ति कहां से आती है कन्या में, वो शक्ति सत्य जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, सच्चाई का ज्ञान कहां से आती है, पति से आती है। तो पति की दी हुई उस शक्ति को जो धारण करती है कन्या, माता बनती है और बड़ी पावरफुल बन जाती है धारण करने से। आती पुरुष से है लेकिन पुरुष धारण नहीं कर पाता। क्या सत्य की उस शक्ति को पुरुष जीवन भर धारण नहीं कर पाता। और भारत की कन्या माता धारण कर लेती है। ये परंपरा किसने चलाई होगी, है? ये सत्य जैसी शक्ति को धारण करने वाली धारण शक्ति सती की परंपरा शुरुआत करने वाली कोई होगी या नहीं होगी, है? कौन? अरे ये तो बोला कि होगी पहले नंबर की, कौन होगी, हैं?
भारत माता।
भारत कन्या क्यों नहीं कहा, हमेशा ये क्यों बोलते हैं भारत माता की जय, झंडा ऊपर कर देंगे भारत माता की जय। यहां से चित्र नहीं है भारत माता का, माता क्यों कह देते हैं, कन्या नहीं थी क्या, है?
वो परम पुरुष शिव के लिए माता है।
हाँ, पुरुष माने पुरु माने शरीर रूपी पुर रहने की जगह, श माने शयन करना आराम से, शरीर रूपी पुर में जो आराम से शयन करता है आत्मा, आत्माओं में वो आत्मा जो शरीर रूपी पुर में आता है, बड़े आराम से रहता है, कोई बेआरामी नहीं, कभी भी बेआरामी नहीं मैं अनुभव नहीं करता। वो पुरुष रूप आत्माओं के बीच उसको कहा जाता है परम पुरुष। कैसा पुरुष? परे ते परे स्टेज में रहने वाला पुरुष, उससे प्रबल कोई पुरुष रूपी आत्मा होती ही नहीं। लेकिन वो परम पुरुष जब इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ चार युगों की, चार शूटिंग, चार सीन की शूटिंग काल पुरुषोत्तम संगम युग में आता है। किसमें आता है? पुरुषों में उत्तम पुरुष जब प्रत्यक्ष होता है तब ही आता है। पुरुषों में उत्तम, माने टैली किया गया, पुरुष ढेर के ढेर हैं, शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्माएं ढेर की ढेर हैं, लेकिन उनमें उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्ट धारी आत्मा जो षष्ठ रूपी रंगमंच पर कैसा पार्ट बजाती? हीरो पार्ट बजाती, उस आत्मा में ही आता है। लेकिन जब आता है तब हीरो पार्ट नहीं बजाती, जब वो आता है उसमें वो तब आता है जब वो जीरो हो जाती है। क्या क्या हो जाती? जीरो। जीरो माने है कुछ भी नहीं। किसी के पास एक पैसा भी न हो, एक रुपया भी न हो, हजार भी न हो, लाख भी नहीं, करोड़ नहीं, कुछ एक भी न हो तो कहेंगे जीरो। किस बात में जीरो? जो कभी इस दुनिया में ऐसा पार्टधारी था जो हीरो कहा जाता था इस दुनिया का, इतनी बड़ी दुनिया, इतने देश देशांतर, इतनी दुनिया में सरकारें, उन सब सरकारों के राज्यों के बीच में हीरो पार्टधारी माने विश्व का मालिक। क्या? किसी राजा का राज्य होता है ना, तो अपने राज्य में हीरो कौन? राजा। वो तो छोटे मोटे ढेर सारे राजाएं हुए, ढेर सारे राज्य हुए, लेकिन ये ऐसा हीरो जो दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों में जो भी रहने वाली प्रजा है, किसी भी धर्म की हो, सब उसे अपना राजा मानते हैं। एक को, किसी दूसरे को राजा नहीं, विश्व पिता। ऐसा राजा मना सब मनुष्यों के बीच, सारी मनुष्य सृष्टि के बीच ऐसा पुरुष जो शरीर रूपी पुरी में तो है, आत्मा तो है, लेकिन आराम से नहीं रह पाता। कैसे में आता है, कैसे में आता है? जो कभी हीरो था सारी दुनिया का, वो लास्ट जन्म में आकर के जीरो बन जाता है, जिसमें सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता। कोई कहे उसमें सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता, तो जो ज्ञान सुनाता है वो सच्चा ज्ञान नहीं सुनाता क्या? है? है? सच्चा ज्ञान सुनाता है या झूठा सुनाता? तो ये कैसे कहे कि वो सच्चाई का नाम निशान नहीं रहा? है? माने ज्ञान प्राय रूप हो गया, कुछ रहा कि नहीं? प्राय माने मोस्टली, ज्यादातर लोप हो गया, तो कुछ रहा होगा ना? नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं रहता। सोने का टाइम नहीं है, जीरो हो जाता, उसमें सत्य का नाम निशान नहीं। सत्य की शक्ति जो होती है ना, सत्य माने ज्ञान, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ज्ञान। जो गीता में भी कहा, नहीं ज्ञान सर्वसम पवित्रम ही विद्यते, यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। और जो जितना पवित्र होगा वो ज्यादा कॉस्टली होगा, ज्यादा कीमती होगा या कम कीमती होगा? घी ले लो, दूध ले लो, मनुष्य ले लो, औरत ले लो, जमीन ले लो, दुकान ले लो, जायदाद ले लो, प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की कीमत ज्यादा लगती है या कम लगती है? तो उसमें पवित्रता का, सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता। तो वो सवाल अभी हुआ, तो वो सत्य ज्ञान नहीं सुनाता क्या? सुनाता तो है, लेकिन उस आत्मा में अपना ज्ञान नहीं है जो सुनाए। किसका सुनाता है? जो चारों युगों में, चारों सीन में, इस ब्रॉड ड्रामा में नहीं आता, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहता है, जन्म मरण में ही नहीं आता, इसलिए कुछ बोलता नहीं। जो जन्म मरण में आत्माएं आती हैं, वो पूर्वजन्म की बातों को भूल जाती है, और वो आता ही नहीं, इसलिए उसे हर जन्म की 84 के चक्र में सब बातें याद रहे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता जानकार, सच्चाई जितनी वो जानता है उतनी सच्चाई कोई नहीं जानता। यहां तक कि कलयुग के अंत में जब वो आता है, तो जिस हीरो पार्टधारी में आता है, कभी हीरो पार्टधारी था, वो भी जीरो हो जाता है। तो वो आता है, और जिसमें आता है किसमें आता होगा? कहते हैं मैं अकेला नहीं आता इस दुनिया में, क्या तीन के साथ आता हूं, इसको उसको इस संसार में त्रिमूर्ति कहा जाता है, तीन देवताएं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जब आया था तो जिसमें आया उसके द्वारा ज्ञान सुनाया या नहीं है? ज्ञान समझ की चीज है या कान से सुनने सुनाने की चीज है? है समझने समझाने की चीज है। समझ माने बुद्धि, और वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो जब आया तीन में से एक में, तो उसने समझा, सुना, समझा और समझाया। तो जिसने सुना पहले पहले, सुनाया की बात नहीं कर रहे, जिसने सुनाया वो अलग, और जिसने सुना वो अलग। क्योंकि शरीर में पहले पहले कान सुनते हैं, है ना? समझते तो
नहीं।
समझते नहीं, कान सुनते हैं और मुख सुनाता है, समझते तो नहीं। लेकिन ज्ञान किसको कहा जाता है? सुनने और सुनाने को नहीं, समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो जिस प्रैक्टिकल रूप के द्वारा सुना भी, समझा भी और समझाया भी, वो प्रैक्टिकल रूप कौन? वो प्रैक्टिकल रूप माने शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है, शरीर की जो कर्मेंद्रियां है ना, उनसे प्रैक्टिकल रूप होता है। उसको इंद्रियां नहीं है, उसको शरीर ही नहीं। तो वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, मैं प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो शरीरधारी है, जिस शरीरधारी में प्रवेश किया उसके द्वारा उसने समझाया और उसने समझा भी, तो प्रैक्टिकल हुआ ना। तो सुना भी, सुनाया भी, समझा भी, समझाया भी, और जहां से प्रत्यक्ष होता है इस संसार में, क्या प्रत्यक्ष होता है इस संसार में, वो स्थान कौन सा? है
इस
ईस्ट बंगाल में किसी ने जाना था, किसी ने पहचाना, जाना था किसी ने? ब्रह्मा बाबा ने जाना है? नहीं। तीन मूर्तियों में से किसी ने जाना? जानकार उसे कहेंगे, समझदार उसे कहेंगे, जो जाने और समझदार बनकर के दूसरों को समझाए। जान लिया, दूसरों को जानकारी नहीं दी, समझ लिया, दूसरों को जानकारी नहीं दी। तो ओम मंडली में तो समझने वाला कोई था, जानने वाला कोई था, लेकिन जिसको जानकारी दी उसको इस बात की जानकारी नहीं दी। वास्तव में समझने वाला कौन और समझाने वाला कौन? वो कौन? किसने जाना, किसने समझा ओम मंडली में? है? उसने समझा, फिर किसको समझा दिया? बड़ी माँ को समझा दिया। बड़ी माँ ने सुना और सुनाया, वो सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की शक्ति है, भक्ति में है। सुने सुनाए सो भगत और समझे समझाए तो ज्ञानी। तो क्या है वो?
दोनों को सिर्फ बड़ी माँ छोटी माँ दोनों को सिर्फ
है।
बड़ी माँ छोटी माँ दोनों को सिर्फ
दोनों
उपस्थित है ना जो समझा।
हाँ, तो किसने किसने समझा और किसने समझाया, और पक्का समझाया या कच्चा समझाया?
जो समझा है वो छोटी माँ।
जिसने समझा भी और समझाया भी वो कौन है? शिवबाप ने समझा, समझाया? समझा नहीं, बिना समझे कोई समझाएगा? समझाएगा है? समझा भी और समझाया भी, ऐसा कोई था? प्रजापिता ने समझाया। देखो, यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था तो समझे समझाएगा कैसे? जब पूरा ज्ञान ही नहीं है तो कैसे समझेगा और कैसे समझाएगा? अधूरा समझेगा और अधूरा
समझाएगा।
साक्षात्कार का रहस्य समझा, और जो समझा वो समझाया, लेकिन क्या 100% समझा, 100% समझाया?
जो जो उसको साक्षात्कार हुआ था उसका पूरा वर्णन तो किया ना, पूरा समझाया?
पूरा समझाया तो पूरा समझाया। पूरा ज्ञान माने इस मनुष्य शक्ति में प्रैक्टिकल में ज्ञान का पार्ट बजाने वाला पूरा ज्ञानी। इस मनुष्य शक्ति में जो भी आत्माओं में ज्ञान होता है उन ज्ञानी आत्माओं के बीच सबका बाप, बाप का परिचय दिया क्या? ज्ञान में सबसे बड़ी बात क्या जानने की है? वो तो यज्ञ के आदि में जिसने समझाया वो भी नहीं जाना, जाना नहीं जाना, और जिसने उसके समझाए हुए को समझा, बड़ी माँ ने तो सुनना सुनाया किया, समझा नहीं, तो जिस छोटी माँ ने समझा है? और जितना समझा उतना दादा लेखराज और ओमरादी मम्मा को समझाया भी, पूरा तो नहीं समझा है, पूरा न समझा, पूरा न समझाया। हाँ, वो छोटी माँ अपने लौकिक पति से जीवन भर प्रभावित रही बुद्धिमत्ता के आधार पर, तो वो प्रभावित होने के कारण उसने यही समझा, किसी व्यक्ति ने समझाया, लेकिन उसको तो वो अपना पति परमेश्वर मानती थी कि सबका मानती थी, अपना मानती थी तो अपना ही समझा और यही बात समझाई कि ये सबका पति परमेश्वर नहीं है, क्या ये सबका पति परमेश्वर नहीं है, मेरा पति परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है। तो ब्रह्मा ने भी ये बात नहीं समझी कि मेरे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किसने दिया, समझा, उनकी बुद्धि में यही रहा कि ये बुद्धिमान आदमी है, इसको मैंने अपनी दुकान में नौकर रखा, मैनेजर बनाया, तो मेरा दास है, मैं इसको पेमेंट देता हूँ और ये मेरी चाकरी करता है, तो अहंकार रहा, और अहंकार ने ये नहीं समझा कि मुझे भगवान का रास्ता बताने वाला कौन है, समझा नहीं समझा। और जिस माता ने परिचय दिया वो खुद भी नहीं समझी, उसने अपने पति की बुद्धिमत्ता को ही सब कुछ मान लिया, ये थोड़े ही जाना कि इस बुद्धिमान पति के भी कोई पति है जो दुनिया में ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, नहीं समझा। और वो जो था जिसने समझाया खुद समझ करके, तो क्या उसने पूरा समझा है? नहीं समझा, नहीं समझा, इसलिए इतना जान लिया कि ये दादा लेखराज ब्रह्मा है, है? और इस ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला कौन, इसे अम्मा को अम्मा बनाने वाला कौन, मैं, और इससे जो भी सृष्टि पैदा होगी ब्रह्मा से, सारी दुनिया की पैदाइश होगी वो सब मेरे बच्चे, पक्का बुद्धि में बैठा या नहीं है, ये बात पक्की बैठ गई। और उस आधार पर उसने वो धोबी घाट का काम शुरू कर दिया, आए होंगे धोबी घाट में क्या होता है, है? कपड़े धोए जाते, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा से पैदा हुए ये कपड़े होंगे, सारी दुनिया इन कपड़ों को धोने का निमित्त कोई तो बनेगा। तो उसने अपने को इतना समझ लिया कि कपड़ों को धोने वाला कोई धोबी होगा, धोबी कपड़ों को धोता है और काहे से धोता है
पानी
से धोता है। नाले के पानी से धोएगा तो कपड़े साफ होंगे या शुद्ध जल से धोएगा तो कपड़े साफ होंगे? तो वो कपड़े तो धोने का काम चालू कर दिया, ज्ञान पूरा था नहीं है। क्या ज्ञान? यही ज्ञान नहीं था कि किसकी स्मृति में रह करके कर्म किया जाए कपड़े धोने का, ये ज्ञान था नहीं था। बस कर्म चालू कर दिया। तो ये कर्म जो है वो रजोगुणी कर्म हुआ, सात्विक कर्म हुआ या सत्व रज तम तीनों गुणों से परे गुणातीत कर्म हुआ है, तमोगुणी कर्म हो गया। तो ऐसे कर्म करने वाला कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए पास होगा या फेल होगा? क्या हुआ? फेल हो गया। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में आया है, लाश भी गुम कर दी। किसकी लाश है? वो ही व्यक्ति की लाश गुम कर दी जिस तन में शिव बाप ने प्रवेश करके ज्ञान का बीज डाला। ज्ञान का जो बीज डाला था उस ज्ञान का नाम क्या रखा? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र नाम क्यों रखा है? कि वो कुछ और हो या न हो लेकिन रौद्र रूप धारण करने का उसके अंदर ज्ञान जरूर है, वो कभी खत्म नहीं होता। क्या? कोई भी जन्म जन्मांतर में कोई भी कैसा भी कहीं भी जन्म लेगा, वो अगर अपनी पर आ जाए तो विनाश तो कर ही सकता है। क्या उसको कोई हराए नहीं सकता? क्योंकि वो है ही हीरो पाटधारी। हीरो पाटधारी को कोई हराए पाता है क्या? नहीं। तो क्या यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली स्थापन हुई तो उस आत्मा की हार नहीं हुई है? हार गई। अच्छा बोलो, हार हुई कि नहीं हुई?
नहीं।
अभी कहते नहीं। हार हुई या नहीं हुई एक बात बताओ? नहीं हुई। अच्छा है? हाँ, जैसे युद्ध होता है ना, योद्धाएं लड़ते हैं, हैं? तो जो योद्धा लड़ते लड़ते खत्म शरीर छोड़ देता है तो वो हार गया या जीत गया है? योद्धा का लक्ष्य तो होता है जीत पाऊंगा, लेकिन जीत नहीं पाई, बीच में ही शरीर छोड़ दिया, हत्या कर दी गई, तो वो जीता या हारा? है जीता। अरे उसका सर जब कलम किया गया और वो भयभीत हो गया कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, और भयभीत स्टेज में, भयभीत भावना में, भय से भरी हुई भावना में उसने शरीर छोड़ दिया। तो भावना अच्छी थी या खराब?
तो
हाँ, भाव प्रधान विश्व रचिरा था। कर्म कैसा भी हो अगर उसमें भाव श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ है, भाव भ्रष्ट है तो कर्म भ्रष्ट है। इसलिए कभी भी निगेटिविटी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। निगेटिव संकल्प माना भाव खराब हो गया। सबके प्रति और अपने प्रति भी शुभ भावना और शुभ कर्म। तो जो भागीदार था जिसमें प्रवेश किया शिव ने और उसके मुख से ज्ञान का बीज डाला, वो तो हो गया रुद्र ज्ञान यज्ञ का मुखिया। रुद्र क्या क्या हो गया? रौद्र रूप, विकराल रूप धारण करने वाला, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है, यज्ञ में, इस ज्ञानी यज्ञ में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। क्या? दोनों काम करने वाली आत्माएं प्रैक्टिकल में इस ज्ञान यज्ञ के आदि में ही थी। कैसी कैसी? कैसी कैसी? स्थापना भी साथ में हुई और विनाश भी, माने स्थापना करने वाली भी आत्मा थी और विनाश करने वाली आत्मा भी थी। स्थापना कैसे होती है? पवित्रता से। माने कोई माता कन्या थी तीन मूर्तियों में से, क्या तीन मूर्तियों में कोई माता कन्या थी? माता थी या कन्या थी? कन्या में ज्यादा प्योरिटी या माता में ज्यादा प्योरिटी? कन्या में ज्यादा प्योरिटी। तो कोई कन्या थी यज्ञ के आदि में? कोई कन्या थी? हैं? है? तो माने प्योरिटी की, प्योरिटी का क्या नाम भंडार तो कोई थी नहीं तीन में से? नहीं थी। हाँ, भगवान का कहना तो है इस पतित दुनिया में पतित तो सबको बनना है, कन्याओं को भी पतित बनना पड़ता है। बिना पतित बनाए ये दुनिया छोड़ती छोड़ती नहीं। लेकिन नियम ये है कि एक से पतित बने। अगर एक से पतित बनती है तो वो पतित नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पावन माने सती। तो ऐसी माताओं में वो माता एक थी दो माताओं के बीच में। एक ऐसी माता थी जो कन्या जीवन से लेकर के शादी होने के बाद भी एक से ही पतित बनी। क्या? अपने पति से ही पतित बनी और किसी से पतित नहीं बनी। कोई प्रश्न कर दे, इस कलयुगी दुनिया में ऐसी कोई कन्या हो सकती है? चलो ज्ञान में आने के बाद कोई हो जाए, ज्ञान मिल गया, तब तो दूसरी बात है। लेकिन इस पतित दुनिया में ज्ञान है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसी कन्या कोई हो सकती है क्या? कोई माता तो भारतीय कन्या सब बैठी हुई है तो सब होनी चाहिए। अरे भारतीय का मतलब ये है भारत से कनेक्टेड, क्या जिसके अंदर भारत ही बसा हुआ हो, जिसके दिल दिल और दिमाग में भारत ही भरा हुआ हो वो भारतीय है। अगर विदेशी कोई पति बस गया दिल और दिमाग में, कोई विदेशी कन्या माता दिल और दिमाग में बस गई तो भारतीय या विदेशी है? क्या कहेंगे? विदेशी। तो जिसके दिल और दिमाग में भारत ही बसा हुआ, भारत का मतलब ही है भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जन्म जन्मांतर मनसा से वाचा से ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेन्द्रियों से ज्ञान में ही रट रहता है। क्या ज्ञान माने? हाँ, सच्चाई में ही रट रहता है, लगा रहता है, वो है भारत। ऐसा जो भारत है उसके दिल और दिमाग में बसी हुई जो कन्या है माता है वो भारतीय माता है। तो भारत हुआ नर से नारायण बनने वाला, जो भारत का अर्थ है वो ही नारायण का अर्थ है। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जो ज्ञान जल का घर बनाकर उसके अंदर रहता है, ज्ञान जल में ही रहता है, क्षीर सागर में। भारत में यही बात शास्त्रों में दिखाई है कि सदा क्षीर सागर में रहने वाला विष्णु है। विष्णु माने स्त्री और पुरुष का कंबाइंड रूप, दोनों एक होके रहे, मन के संकल्पों से भी एक, दृष्टि से भी एक, और वाचा से भी एक, और कर्मेंद्रियों के कर्मों में भी एक होके रहे। तो उसको कहते हैं विष्णु, नो विषय काल, उनको विषय विकारी नहीं कहेंगे, स्त्री पुरुष को, ऐसे स्त्री पुरुष जिनकी दृष्टि एक दूसरे में ही डूबती है, दूसरे में किसी में नहीं डूबती, जिनकी कर्मेंद्रियां एक दूसरे में सुख लेती है किसी और में सुख नहीं लेती, तो उसको कहेंगे विष्णु समान। कैसा? विष्णु। और विष्णु सृष्टि के आदि में बनाता है कि मध्य में बनाता है कि अंत में बनाता है? जब सृष्टि की रचना हुई थी नई सृष्टि की, तो पहले ऊंचते ऊंचे पदधारी कौन था? गीता में लिखा है क्या परम पद क्या है? विष्णु। वो परम पदधारी किसने बनाया? बनाया नहीं, उसने रास्ता बताया कि परम पदधारी कैसे बनना है, और जो बना वो विष्णु बना। तो कब बना? पहले पहले सृष्टि के आदि में बना, मध्य में बना, या तमो प्रधान सृष्टि में अंत में बना? कब बना था? किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। चलो मान लिया थोड़े समय के लिए शिव बाबा ने बनाया, ऐसे तो बाबा ग्रैंडफादर को बताया है ब्रह्म वाक्य मुरली में। ग्रैंडफादर उसे कहा जाता है जो बाप का बाप हो, क्या? और वो सिर्फ बाप है या ग्रैंडफादर है? तो उसको शिव बाबा कहते हो है? हाँ, वो तो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। वो जब सृष्टि पर आता है, जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, उसके साथ सब संबंध बनते हैं। क्या? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव, मेरे तुम्हारे साथ सर्व संबंध है। ऐसा कोई संबंध नहीं है जो तुम्हारे साथ उस तरफ इशारा करें या उस तरफ इशारा करें। किसके साथ? जिसमें प्रवेश किया। तो शिव बाबा नहीं कहना उसे, उसको वो है शिव बाप, जिसमें प्रवेश किया शिव बाबा। लेकिन वो उस समय भी शिव बाबा नहीं है, उसने अपने को पहचाना? जब पहचाना ही नहीं अपने को, तो बाबा कहां से बन गया? वो तो अज्ञानता की स्टेज हो गई। इसीलिए सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकारों ने हमला कर दिया एंटी ओम मंडली बना करके, और लाश गुम कर दी। तो जो ओम मंडली का काम शुरू हुआ था वो काम फेल हो गया या पूरा हो गया है?
स्थापना विनाश दोनों हो गए।
स्थापना भी हो गई, विनाश भी हो गया। उसके बाद स्थापना हो गई तो नई दुनिया आई। नई दुनिया आ गई तो फेल हुआ या पास हुआ?
ब्राह्मण तो दुनिया तो शुरुआत
हुई। दुनिया आगे बढ़ी 5000 साल तक, हजारों साल। जो भगवान जो दुनिया स्थापन करता है वो हैविन की दुनिया अल्पकाल की या अविनाशी है? अनेक जन्मों से कनेक्टेड है, अल्पकाल की है। भगवान जो दुनिया रखता है, जो हैविन रचता है, वो सदाकाल का, अनेक जन्मों का क्या है? अल्पकाल का है, अनेक जन्मों के लिए रचता है। तो दुनिया जो ओम मंडली में स्थापन करने का लक्ष्य लिया गया वो फेल हो गई या पास हो गई? फेल हो गई। इसलिए शिव बाबा कहाँ प्रत्यक्ष हुआ है? शिव बाबा हुआ प्रत्यक्ष? कोई अपने आप बन करके बैठ जाए मैं शिव बाबा हूँ पतितों को पावन बनाने वाला, तो ऐसे समझ के बैठने से शिव बाबा हो जाएगा है? अरे लोगों को समझाना तो पड़े। तो जिस समय उसमें उसने प्रवेश किया, उस समय जिसमें प्रवेश किया वो पति था या नहीं था, और उसको कोई पत्नी थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? तो वो पति पत्नी दोनों मिलकर के एक होके रह रहे थे जीवन में या आपस में झगड़ते थे? हैं? एक होके रह रहे थे, ऐसा ही है ना? फिर जब से उस पत्नी ने ब्रह्मा कहे ना, उसको कैसा ब्रह्मा? आत्मिक रूप में समझने समझाने वाला ब्रह्मा या शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला ब्रह्मा? सिर्फ शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला ब्रह्मा तो वो माता हुई जो मुख से बोलती थी, सुनना सुनाना करती थी कर्मेंद्रियों से, लेकिन समझा नहीं। दूसरी माता जो भागीदार की पत्नी थी,
उसने कुछ ना कुछ समझा या नहीं समझा। जितना समझा उतना ब्रह्मा बाबा को समझा। ब्रह्मा बाबा उनके साथ समझने वाली जो ओम राधे बच्ची थी, दोनों ने साथ साथ समझा। सूची हो गई ना, तो नई दुनिया में दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं जिन्होंने समझाया है? तो जिस माता ने समझाया वो माता क्या हो गई? पहला ब्रह्मा हो गई। और बाप कौन हो गया है? जिसमें प्रवेश किया वो बाप हो गया। ज्ञान का बीज डालने वाला बाप हो गया।
उस ज्ञान के बीज को धारण करने वाली कौन है? सती। शास्त्रों में पार्वती के पूर्व जन्म का नाम है सती, क्योंकि जन्म जन्मांतर उसने सत्य को धारण किया है। क्या इस साकार दुनिया में सत्य जो कहा जाता है, सत्य माने शक्ति, सत्व, वो साकार होगा या निराकार होगा? है? तो साकार सत्व माने वीर्य। वीर्य को जिसने जन्म जन्मांतर धारण किया सच्चाई से, सती साध्वी औरत होगी, तो पति के द्वारा डाले गए बीज को, सत्व को, वीर्य को सच्चाई से धारण करेगी या चोरी चकारी करेगी? चोरी से किसी और का बीज भी धारण कर लेगी? अरे चोरी से किसी और का डाला हुआ सत्य धारण करेगी सती? अगर करेगी तो सती नहीं, सत्य को धारण करने वाली सती नहीं, और नहीं करेगी तो सती। तो उसने जब शिव प्रवेश करते हैं निराकार, तो निराकार शिव का जो निराकारी सत्य है, निराकारी ज्ञान, उसको धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया। और जो निराकारी ज्ञान प्रैक्टिकल में धारण किया और जितना धारण किया उतना दादा लेखराज को, ओम राधे को बता दिया, तो वो माता हो गई। यहाँ बीज डाली और वहां प्रैक्टिकल में जन्म देने वाली जन्मदात्री माता बनती। लेकिन जो यहाँ माता बनी वो माता सिर्फ अकेली समझने वाली, समझाने वाली बुद्धिमती माता थी या देह धारण करने वाला ही भी माता थी? बुद्धि थी। उस बुद्धि अकेली काम नहीं करती, मन बुद्धि के साथ जब तक शरीर नहीं होगा तो काम कुछ भी नहीं होगा। वो बुद्धिमानों की बुद्धि कोई काम नहीं कर सकता, कर सकता है? वो आ करता है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो करता है। तो आत्मा और शरीर दोनों का मेल चाहिए। तो यज्ञ के आदि में वो माता कौन, जो प्रैक्टिकल में शरीर धारण करने वाली थी लेकिन उसमें बुद्धि की प्रबलता थी, बुद्धि सात्विक थी, जन्म जन्मांतर की सात्विक बुद्धि, जिसने किसी भी जीवन में किसी दूसरे पति को स्वीकार नहीं किया, ऐसी सात्विक बुद्धि वाली माता। फिर पांच तत्वों का देह का संग का रंग लगता है तो माता कही जाती है, है? तो जिसे हम माता कहते हैं, जग जननी कहते हैं, वो जगत की जननी सिर्फ मन बुद्धि वाली है या शरीर वाली भी है? शरीर और मन बुद्धि दोनों का मेल है, तो दोनों आत्माएं यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली बनी थी तो एक दूसरे की पक्की सहेली थी। क्या कैसी थी? सहेली, मिलकर के रहने वाली, तो दोनों की युति बनी। आदि में जो युति बनती है वो अंत में, आदि सो अंत, माने इस यज्ञ का जब संपूर्ण आहुति होती है तो उस समय जो लक्ष्मी है और जो जगदम्बा है दोनों का मेल होता है स्वभाव संस्कार का, और दोनों मिलकर के महालक्ष्मी बनती है। क्या बनती है? महालक्ष्मी। उस महालक्ष्मी की दीपावली पर पूजा होती है, संपन्न लक्ष्मी कही जाती है। क्या बंगाल में हुआ? लेकिन बंगाल में एक था बीज, सूक्ष्मतः सूक्ष्म मनुष्य शक्ति का बीज, राम बाप को कहा जाता है बीज, और सागर के किनारे रहने वाली धरणी माता। बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा राज्य स्टेट है जिसके किनारे ज्यादा से ज्यादा किनारे लंबे तक सागर ही सागर हो? है आंध्रा, एक आंध्रा स्टेट है जिसके लंबे से लंबे किनारे में सागर है, आंध्रा के किनारे पर। आंध्रा माने अंधा, क्योंकि भारत का विदेश है ना, क्या है भारत का विदेश, विदेशों की भाषा अलग होती ही नहीं कि हिंदी भाषा है। ये तो जब से बाबा आए हैं तो माताएं कुछ हिंदी समझती हैं, उससे पहले तो जानती। तो भाषा अलग, परंपराएं अलग, नॉर्थ इंडिया की परंपराएं और दक्षिण भारत की परंपराएं अलग। भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है। क्या? भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है। भगवान की बात अगर सुनेंगी तो एकदम आतुर हो जाएंगे। क्या? नॉर्थ इंडिया के लोग, भगवान जब आता है नॉर्थ इंडिया से प्रत्यक्ष होता है तो नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं पहचानते, क्योंकि वहां की माताएं नहीं पहचानती, और दक्षिण भारत की कन्याएं माताएं पटाख से पहचानती है। बताओ, भाषा भी अलग, परंपराएं भी अलग, और शरीर भी विदेशियों की तरह। कैसे? आप नॉर्थ इंडिया के शरीरों को देखो और दक्षिण भारत के शरीरों को देखो, ध्यान से देखो भाइयों को। नॉर्थ इंडिया के भाई लोग छोटे छोटे कद के होंगे और साउथ इंडिया के भाई लोग लंबे चौड़े हट्टे कद्दे। साउथ, साउथ माने दक्षिण, साउथ माने दक्षिण, जो देश हैं दक्षिण साइड के दुनिया के, उसमें होते हैं मोस्टली अफ्रीकन्स और अरबियंस। कौन? अफ्रीकन और अरबियन। इतनी गर्मी पड़ती है कि रंग कैसा हो जाता है? काला। तो देख लो, नॉर्थ इंडिया में गोरे मोस्टली और साउथ इंडिया में काले होते हैं। लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होंगे लेकिन चमड़ी काली। परंपराएं अलग अलग। नॉर्थ इंडिया में बहन के साथ शादी नीच कुल के भी नहीं करते। क्या? बाप की बेटी हो, चाचा की बेटी हो, मामा की बेटी हो, ताऊ की बेटी हो, शादी नहीं करेंगे। और यहाँ साउथ इंडिया में करते हैं या नहीं करते? परंपराएं अलग अलग। तो साउथ इंडिया में भावना इतनी ज्यादा है, भक्ति भावना, कि कानों में आवाज पड़ती है भगवान आया हुआ है और फट से भाग खड़े हुए। साउथ के लोग, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो किसी भी साउथ स्टेट के हों, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जाकर के भगवान को सबसे पहले पहचाना। क्या? कितनी वंडरफुल बात। भगवान आता है, हिंदी में बोलता है और हिंदी भाषी भाषी भाषा भाषी क्षेत्र के नॉर्थ इंडिया के लोगों ने नहीं पहचाना। किसने पहचाना? साउथ इंडिया के लोगों ने पहचान लिया और लाम लगा दी। पार्टियों के बाद पार्टियां, पार्टियों के बाद पार्टियां। और बाप के घर में जाकर के जैसे बच्चा पैदा होता है 9 महीने में गुप्त गर्भ में रह करके, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सांस लेता है, ऐसे 9 दिन की बच्ची पूरी करके बाप के घर में जाके जन्म ले लेते हैं। क्या? कहां जन्म लेते? बाप के घर में जाके जन्म ले। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं बाप के घर में अगर जाकर जन्म ले लें तो बच्चे कहे जाते हैं? ये परंपरा कहां से पड़ी? है संगम युग में, जब वो भगवान आत्माओं का बाप आता है तो मनुष्य शक्ति के बाप में प्रवेश करके ये परंपरा डालता है। क्या? कि मनुष्य शक्ति के बाप का जो शारीरिक जन्म जहां कहीं भी है इस दुनिया में, वो उसका घर है। क्या? शरीर जहां पैदा होता है वो ही घर माना जाता है कि नहीं? तो वो बाप जो ब्रह्म वाक्य बोलता है कि विश्व का मालिक फरुखाबाद से कनेक्टेड है। कहां से कनेक्टेड? फरुखाबाद। फरुखाबाद के लोग आज भी मालिक को बहुत मानते हैं। विश्व का मालिक फरुखाबाद का बोला। उन फरुखाबाद वालों से पूछो, तुम्हारा मालिक साकार है या निराकार? तो क्या कहेंगे? मालिक तो साकार ही होता है। तो बाप के घर में जाकर के, बेहद के बाप के शारीरिक घर में जाकर के बच्चों ने जन्म लिया, अभी भी जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? मृत्यु लोक है या अमर लोक है? जहां जन्म ले रहे हैं वो दुनिया मृत्यु लोक है या अमर लोक है? मृत्यु लोक है। माने जो जन्म लेते हैं वो मर भी सकते हैं कि नहीं? तो मर रहे हैं या नहीं? है? मर भी रहे हैं। लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। जैसी शूटिंग होगी
वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामा में रिहर्सल होगी। ब्रॉड ड्रामा में सतयुग से लेकर दुनिया की जनसंख्या कलयुग के अंत तक बढ़ती रहती है कि घटती है, और मरने वाले मरते रहते हैं कि नहीं हैं? मरने वाले मरते हैं लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या फिर भी बढ़ती रहती, दुनिया की संख्या बढ़ती रहती। तो यहाँ भी क्या होता है, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया की जो सृष्टि ब्रह्मा द्वारा भगवान आकर के रचते हैं, उसमें भी जो विश्व पिता के बच्चे बनते हैं उनकी संख्या लगातार, जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती है और अनिश्चय रूपी मृत्यु लेने वालों की संख्या वो भी रहती है। भले वो संख्या भी बढ़ती है लेकिन जन्म लेने वालों के मुकाबले कम होती है। तो देखो प्रैक्टिकल में शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। जैसे दुनिया में जो आते हैं, इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस दुनिया की जानकारी में आते हैं, आते हैं ना, पहला जन्म लेते हैं, तो जो भी आत्माएं पर आत्मलोक से उतरती हैं वो इस दुनिया में आके जन्म लेती है। तो जिस नंबर से आके जन्म लेती हैं, नंबर होता है ना, जिस नंबर से आके जन्म लेती है शूटिंग पीरियड में उसी नंबर में आकर के ज्ञान में आती है। नंबर है जो पहले नंबर में ज्ञान में आता है शूटिंग पीरियड पुरुषोत्तम संगम युग में वो बड़ा बच्चा, जो बाद में आता है वो छोटा बच्चा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी नंबर वार आती हैं, ये एकदम आ जाती हैं। ऐसे ही ज्ञान में 500-700 करोड़ नंबर वार आते हैं, ये इकट्ठे आ जाते हैं। उनमें भी मरना जीना तो लगा ही रहता है, नहीं लगा रहता है, लगा रहता है। तो बताया कि वो परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं के बीच में जो परम पुरुष है वो इस सृष्टि पर आता है। तो आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है उसमें प्रवेश करता है, उसका नाम परमात्मा। कैसी आत्मा? परमात्मा। आप कहेंगे परमात्मा तो वो है, अरे उसको तो किसी से टैली नहीं किया जा सकता। क्या जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में उसको किसी से टैली नहीं किया जा सकता, उसको टैली नहीं कर सकते। लेकिन जब वो जिसमें प्रवेश करता है उसका टाइटल है परमात्मा। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा, जिसका गीता में भी वर्णन है परमात्मा इति उदाहरत, उसको परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। क्या गीता में भी बताया तीन तरह की आत्माएं, एक है अक्षर, वो है एक, क्या वो एक है अक्षर, और दूसरी है साक्षर, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, नीचे गिरने वाली। उसमें हीरो पार्टधारी भी आ जाता है। क्या हीरो पार्टधारी भी जीरो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो जीरो पार्टधारी आत्मा जीरो तो बनती है, लेकिन जब हीरो पार्टधारी में वो निराकार ज्योति बिंदु जो कोई पार्ट प्ले करने में इस चक्र में नहीं आता, क्या ब्रॉड ड्रामा में नहीं आता, क्योंकि उसका कहना है कि जो चक्र में आए वो गिनती में आए, मैं न चक्कर में आता हूं
न 84 के चक्र में आता हूँ और न मैं गिनती में आता हूँ। तो वो जिसमें प्रवेश करता है वो इस चक्कर में आता है। क्या? तो जो चक्कर में आता है वो फिर अव्वल नंबर की गिनती में आता है। क्यों? क्योंकि वो सारे ही चक्कर का चक्कर लगाता है और ऐसा चक्कर लगाता है कि इस दुनिया में ही चक्कर काटता है। क्या? वो इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ता, एक ही है। तो उसको कहा गया है परमात्मा इति उदाहरत। ऐसी आत्मा जो ऐसा पुरुषार्थी है कि परमात्मा का टाइटल लेता है। कैसा? परमात्मा का टाइटल। ऐसा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। आपस में बाद में बात कर लेना, बहुत जरूरी है। जाओ ना, जाओ ना, जीव निकाल रही है। ऐसा पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, जो आदि से लेकर के अंत तक तो पार्ट बजाता ही है, लेकिन अंत में भी इस सृष्टि को नहीं छोड़ता। कोई कहे अरे सारी आत्माएं तो सृष्टि छोड़ करके परमधाम वापस जाती हैं बाप के घर में, लेकिन वो कहता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबर वार आपस भगवान नहीं बना के जाता हूँ, आप समान बना के जाता हूँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना के जाता हूँ। जो निराकारी अव्वल नंबर में बनता है वो शरीर भी निराकारी या साकारी है? शरीर भी निराकारी, जैसे परमधाम महात्माओं का लोक निराकारी, वैसे शरीर भी निराकारी। उस निराकारी शरीर में वो आत्मा तो रहेगी और इस रूप में रहेगी कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बनकर रहेगी। जैसे बाप के अंदर सारे परिवार का बीज समाया हुआ है, सारे परिवार में जितने बच्चे बच्चियां माता पैदा होती है उन सब का बीज किसमें होता है? बाप में। तो वो मनुष्य सृष्टि का ऐसा बाप है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं सबकी आत्मा उसमें समा जाती है बिंदु बनकर। इसलिए वो ही एक ऐसा पार्टधारी है जो संपन्न बनने पर ये कहता है मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या कहता है? वो कहता है मेरे मन में समा जा। अरे धर्म पिता है तो लड़ पड़ेंगे, तेरे में क्यों समा जाऊं, मैं निराकार भगवान में समा जाऊं ना। लड़ेंगे कि नहीं है? जन्म जन्मांतर वो निराकार को मानते हैं तो साकार को भगवान मानेंगे। लेकिन वो जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, प्यार से समा जा। क्या? प्यार से समा जा तो बहुत अच्छा। क्या? और प्यार की भाषा नहीं जानता तो धर्मराज को सौंप दूंगा और मानना पड़ेगा। क्या? कि आत्मा भी निराकार होती है, शरीर साकार होता है। निराकार आत्मा बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती। क्या? निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कुछ भी, ऐसे ही वो निराकार आत्माओं का बाप। वो निराकार तो है लेकिन वो निराकार ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इस नई दुनिया में जो सूरज चांद सितारे सतो प्रधान बनते हैं, सुखदाई बनते हैं, ये कैसे सुखदाई बनाता है? तो मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमानों से पूछो तो वो कहेंगे अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफ्ताब बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया, अल्लाह मियां ने चांद सितारे बनाए, अल्लाह मियां ने ये फरमाया। अरे फरमान लेना, फरमाना मुख के बगैर होगा क्या? है? तुम्हारा अल्लाह मियां फरमाता है तो क्या ऊपर से आवाज आती है? है? आती है तुम्हारे कान में? तुम भले चिल्लाते रहते हो, तुम चिल्लाते हो वो बात ठीक है, लेकिन तुम अंधश्रद्धा से चिल्लाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवाज उसके पास नहीं पहुंचती, उसको कान है ही नहीं। तो बताया कि सारी दुनिया को अंत में समझना पड़ेगा क्या, कि वो हेवनली गॉडफादर इस सृष्टि पर आकर के हेल को, नरक को स्वर्ग बनाता है, हेवन बनाता है, आता है तब बनाता है। और इस मनुष्य सृष्टि के आदम में, एडम में आकर बनाता है, जो आदि पुरुष था उसमें आके बनाता है। सभी धर्म पिताएं उस आदम को, एडम को मानते तो हैं कि हां कभी था, लेकिन जानते नहीं, उसकी जीवन कहानी को नहीं जानते, क्योंकि हजारों साल पुरानी बात है, जन्म मरण के चक्र में आके साथ भूल जाते हैं। तो वो आके बताता है क्या, कि सब मनुष्य सृष्टि में सब आदमियों का आदि पुरुष आदम, जो सदा काल हर जन्म हर युग में, हेविन में भी, हेल में भी, इसी दुनिया में पार्ट बजाता है, वो व्यक्ति कौन है? क्या उस व्यक्ति को जानोगे कि तुम मनुष्यों का पिता कौन है? वेद का जानोगे तभी तुम हेविन में जा सकोगे, सुख की दुनिया में। नहीं जानोगे तो नहीं जा सकोगे। पहले पहले जान लोगे तो नई सृष्टि के आदि में हेविन की दुनिया में जाओगे, सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में जाओगे। नहीं जानोगे, अपने अहंकार में रहोगे तो बाद में जानोगे, और जब लास्ट में जानोगे, हट पकड़ोगे तो क्या होगा? है? हाँ, फिर तुम्हें जबरियन मानना पड़ेगा, धर्मराज की सजाएं खा खा करके तुम्हारा देहभान छूटेगा, देह का अहंकार छूटेगा, और वो तुमको भी जन्नत में पहुंचाएगा, सदा काल की जन्नत में जाना हो लंबे समय तक तो जल्दी पहचानो, और लास्ट में पहचानना है तो लास्ट में जन्नत तो मिलेगी, क्योंकि वो आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, सबको लिबरेट करने के लिए। क्या? सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा, लेकिन कोई अल्पकाल की जीवन मुक्ति लेंगे, कोई लंबे समय की जीवन मुक्ति लेंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं देता। क्या? वो निराकार स्वयं नहीं देता, क्योंकि देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, देने के लिए वो निराकार है, उसके पास निराकारी ज्ञान है और निराकारी ज्ञान शरीर के द्वारा ही धारण किया जा सकता है। क्या जो भारत के लोग समझ बैठे हैं कि वो जानवरों में आता है भगवान, जानवरों का अवतार लेता है कच्छ मच्छ, वो भी बात नहीं। हाँ ये जरूर है कि जानवर जैसे जानवर से भी बदतर मनुष्यों में आता है। क्या जानवर से भी बदतर स्वभाव संस्कार हो जाते हैं उनमें आता है और आकर के उनको स्वर्ग में भेजने लायक बना देता है। तो बताया कि वो जिसमें आता है उसको माता बनाता है। क्या नई दुनिया का परिवार बनाना है ना, इसलिए नई दुनिया का परिवार रचने के लिए जिसमें भी पहले पहले प्रवेश करता है उसको माता बनाता है। वो हो गया परम ब्रह्म। क्या हो गया? परम ब्रह्म, माताओं में परे ते परे रहने वाली माता। परंतु बताया, ये तो ठीक बात है, पुरुष तन में भी आऊंगा तो उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, लेकिन बताया जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा है, पुरुष तन है, बच्चों को कैसे संभालेगा? बच्चे बच्चियों को संभालने के लिए माता चाहिए या पुरुष चाहिए? माता चाहिए। इसलिए ओमराजे मम्मा को निमित्त बनाता है, बच्ची को माता बना देता है निमित्त मात्र। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो परम ब्रह्म आदि ब्रह्मा हुआ उसमें प्रवेश करता है, पुरुष तन है, तो कन्याओं माता रूपी जो बच्चे हैं उनको कैसे संभालेगा? इसलिए उनकी संभाल के लिए जो माताएं हैं ना दो, और दोनों मिलकर के एक होके रहती थी है? दोनों माताएं, एक बुद्धिवादी और एक भावनावादी, दोनों माताएं जो मिलकर एक रहती थी उनकी बच्ची पैदा होती है पहले पहले। कैसी आत्माओं में बच्ची? रुद्रमाला में बच्ची। कैसी बच्ची? रुद्रमाला मतलब रुद्र के पहलौटी के जो बच्चे पैदा होते हैं, रुद्राक्ष जिनकी यादगार है, वो रुद्राक्ष बच्चों में पहली पहली बच्ची पैदा होती है उसको टाइटल दे देता हूं, क्योंकि माता का काम करती है ना। माता है नहीं, क्या माता का शरीर है, इसलिए है तो बच्ची ना है, तो वो रुद्रमाला में जो रुद्राक्ष के मन के रुद्र के बच्चे हैं, किसके बच्चे? रुद्र के, जिसके नाम पर यज्ञ का नाम क्या पड़ता है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। और उस ज्ञान का जो फल है वो क्या है? याद। क्या? तो नंबर वार ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाले जो रुद्रमाला के बच्चे हैं, उन बच्चों में प्रैक्टिकल जीवन में जो धारण करने वाली कन्या है माता पिता की, क्या वो कौन है? योगिनी माता, काशी नगरी। क्या वो काशी नगरी जो धरणी माता से जन्म लेती है, लेती है ना, वो धरणी को हिरण्याक्ष राक्षस जब पाताल में ले जाता है तो काशी नगरी छिटक जाती है। क्या काशी नगरी छिटक जाती है? धरणी के साथ पाताल में नहीं जाती, गड्ढे में नहीं जाती, पतित नहीं बनती, क्या पतित नहीं बनती, वो छिटक जाती है काशी नगरी। तो प्रैक्टिकल बातें हैं, अगला जन्म लेकर के वही माताएं यज्ञ के आदि वाली, जब अगले प्रैक्टिकल ज्ञान जीवन में धारण करती हैं, तो ज्ञान यज्ञ में छोटी माँ और बड़ी माँ के रूप से विख्यात होती है, जगदम्बा और लक्ष्मी माँ, क्या काली और गौरी। तो काला शरीर बनता है संग के रंग में आकर, या आत्मा काली बनती है, शरीर काला बनता है, शरीर में परिवर्तन होता जाता है। जैसे कोई ज्यादा पाप कर्म करेगा इस जन्म में, बहुत हत्याएं करेगा, बहुत डकैतियां डालेगा, तो अगले जन्म में उसको अच्छा शरीर मिलेगा, सुखदायी स्वस्थ शरीर मिलेगा या खराब शरीर मिलेगा, है खराब शरीर। बहुत से तो इतना हाथ पांव से हिंसा करते हैं कि पेट में ही लूले लंगड़े हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, लूले लंगड़े बनकर के पैदा होते हैं। तो आत्मा गिरती है तो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं, आत्मा के संस्कार खराब होते हैं तो शरीर खराब मिलता है, या तो गरीब घर में जन्म लेता है, है तन से दुखी, धन से दुखी, मन से दुखी, हर तरह से दुखी दुखी शरीर वाला पैदा होता है। तो आत्मा सात्विक दुनिया में आती है तो सात्विक शरीर, और तामसी दुनिया में आती है उतरते उतरते तो तामसी शरीर। तो आत्मा को भी संघ का रंग लगता है, लेकिन ज्यादा संघ का रंग शरीर को लगता है कि आत्मा को लगता है, है शरीर को लगता है। वो आत्मा क्या है, वो आत्मा, लेकिन इस षष्ठी पर तो आता है, लेकिन वो ऐसी आत्मा है जिसको संघ का रंग नहीं लगता। वो जिसमें प्रवेश करता है उस शरीरधारी को संघ का रंग लगता है, शरीर को संघ का रंग लगता है, इसलिए वो शरीर जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते आखिरी में वो आत्मा ज्यादा पतित बनती है कि वो शरीर पतित पत्थर बुद्धि बन जाता है, शरीर पत्थर बुद्धि बन जाता है। इतना पत्थर बुद्धि, इतना बड़ा पत्थर जो दुनिया में ग्रेनाइट पत्थर कहा जाता है, ऐसा पत्थरीली बुद्धि वाला, वो उसी तन में आकर कितना समझाता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, लेकिन वो इस ज्ञान को धारण करता है, है? नहीं धारण करता। विष पाई बनता है और ज्यादा बनता जाता है कि कम बनता है, है? और ही जास्ती बनता जाता है। लेकिन उसका पहला पहला नाम क्या रखा उसने, परम ब्रह्म, लेकिन नाम तो रखा, शरीर से काम तो नहीं बजाया। ओम मंडली का कार्यकाल जब तक रहा उस शरीर के द्वारा धोबी का पार्ट निभाया प्रैक्टिकल में या नहीं निभाया, है? क्या साफ किया? शरीर रूपी वस्त्र साफ किए। वो नहीं जानता था उस समय कि जो शुद्ध आत्मा है, जिसमें देह का भान अंश मात्र भी नहीं है, उसको संग का रंग नहीं लगता। लेकिन वो आत्माएं जिनको देह है और देहभान भी है, उनको संग का रंग भी लगता है। तो इस रहस्य को न जानने के कारण वो आत्मा आदि में भी क्या होती रही, विष पाई भी नहीं रही और अंत तक भी विष पाई का ही पार्ट बजाती है, विष पीना छोड़ती नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य भी है, मुरली में इशारा दे दिया, याद है? नहीं याद है? सुनो, इशारा दिया है, बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, क्या इशारा दिया? बाप विदेशी बनकर आया, स्वदेशी जो भारत देश है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली राम पुरुषोत्तम बन के नहीं आया हुआ है। क्या? एक पत्नी व्रतधारी राम बनकर नहीं आया हुआ है। क्या बनकर? स्वदेशी बनकर आया या विदेशी बनकर आया है? विदेशी। विदेशी क्या करते हैं? जीवन में एक पत्नी बनाते हैं या उनकी गिनती ही नहीं है, ढेर पत्नियां बनाते हैं। ऐसे इशारा दे दिया, बाप विदेशी बनकर आया, वो या जिसमें प्रवेश करता वो कौन है? वो माने दूर, ये माने जो इस सृष्टि में है, वो बाप अगले जन्म में विदेशी बनकर आया हुआ। ब्रह्मा मुख से ही बोला, माने विषपाई होगा या नहीं होगा? विष माने पराई स्त्री को भोग करने वाला विषपाई कहा जाता है। पराई स्त्री का भोग विष है, पर पुरुष का भोग भी विष है। ऐसी स्त्री जो पर पुरुष का संग करती है, भोग करती है, वो घर को नरक बनाती है या स्वर्ग बनाती है? तो आज भी कहावत है भारत में, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री गंदी हो तो घर नरक बन जाए।
बाप तो ज्ञान
पवित्र
है ना, वो
विस्पाई
फैक्ट्री का नहीं होता ना,
उसका नाम क्या रखता है काम निकालने के लिए? बताओ जल्दी, क्या काम लेना है उसे? उसे जब आता है तो क्या काम लेना है? पतितों को पावन बनाने का काम लेना है, वो तो लेना है, लेकिन पहला काम क्या लेना है? ब्राह्मणों की नई दुनिया बढ़ानी है या नहीं बनानी है? उसके लिए माँ चाहिए या बाप चाहिए? है माँ चाहिए। हाँ, पुरुष तन में आता है और पुरुष तन सत्य को धारण करने वाला प्रथम है। क्या? नारी प्रथम है या नर प्रथम है? सत्व जो निराकार भी है, सत्व जो साकार भी है। क्या? उस निराकार का जो सत्व है वो ज्ञान है, वो निराकार है, और साकार का सत्व है वीर्य। हर पुरुष हर नर में वो सत्व आता है अपने टाइम पर, क्या जन्म लेते ही नहीं होता है? जन्म लेते ही होता है नहीं, पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, है? उसे कहा जाता है वयस्क, क्या कहते हैं, बालिग, सगीर, तब वो सत्व पकता है। उसमें भी ऐसे ही है, जब पूरे 5000 वर्ष हो जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल हो जाते हैं, पूरा चक्कर हो जाता है, और उस चक्कर को वो आत्मा क्रॉस करती है, जिसमें प्रवेश करता है। जब क्रॉस करती है तो उसमें तीनों काल का ज्ञान आ जाता है। वो उस ज्ञान को उस समय धारण करके हमेशा नहीं रख सकता, इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला मुझे तलब हो जाती है, क्या मैं ठहर नहीं सकता और मैं इस शक्ति पर आता हूं। नई शक्ति रचने के लिए, नया परिवार बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए, सारी वसुधा सारी पृथ्वी को अपना कुटुंब परिवार बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तो पुरुष है, माता तो है ही नहीं, इसलिए तीन मूर्तियों में से दो मूर्तियों को देखता हूं। क्या वो दोनों जो मूर्तियां हैं उनमें एक आत्मा और एक पूरा शरीर, एक है देहभान वाली और एक है आत्मिक स्थिति वाली, उन दोनों आत्माओं का आधार लेता हूं। लेकिन आधार लेने का लक्ष्य क्या है? सुनना सुनाना या समझना समझाना? सुनने सुनाने को भक्ति कहा जाता है और समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो मेरे आने का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का बीज डालना, अहम ज्ञान, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। तो वो आकर के मनुष्य तन में ज्ञान का बीज डालता है, लेकिन वो ज्ञान का बीज नर में डालता है या नारी में डालता है? है नर में डालता है, और नर को पुरुष कहा जाता है। और ब्रह्म वाक्य है मुरली में, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो सब सब दुर्योधन दुशासन, ए टू जेड, चाहे ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज हो, चाहे शंकर हो, चाहे कोई भी देवता इस पति दुनिया का हो, पुरुषार्थी सब पुरुष, सब दुर्योधन दुशासन। उनके अंदर जब वो सत्व की शक्ति आती है, चाहे साकार शक्ति चाहे निराकार ज्ञान की शक्ति, सत्व सत्व, तो वो उस सत्व को अपने अंदर धारण करके क्या रखते हैं। जैसे कोई नौजवान होता है तो उसके अंदर सत्व आता है ना, शक्ति आती है ना, नहीं आती? सत्व की शक्ति, सत्व आती है, सत्व आता है। उस सत्व को जो कन्या माता धारण करती है सच्चाई से, वो सती कही जाती है। बाकी वो पुरुष नहीं धारण कर सकता जीवन भर। ऐसा कोई पुरुष, ऐसा कोई नर देखा हो, सुना हो तो नाम बताओ? इस दुनिया में एक भी पुरुष नहीं, एक भी नर नहीं जो सत्व की शक्ति को जीवन भर अपने जीवन में धारण करके। ये परंपरा किसने शुरू की, कहां से हुई? है संगम युग से शुरू हुई, और शुरुआत किसने की? वो जब आता है तो वो परम पुरुष है। क्या पुरुष माने आत्मा, आत्माओं के बीच में कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा, आत्माओं ने शरीर रूपी पूरी में रह करके शा माने शयन करने का जो पार्ट बजाया है, आराम से रहने का पार्ट बजाया है, जैसा वो बजाता है पतित में भी आता है, पतित दुनिया में भी आता है तो भी कैसा पार्ट बजाता है, है? परम पार्टधारी है, लेकिन सदा काल का नहीं, सिर्फ संगम युग में। इसलिए कहता है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं साकार में, वो साकार और उसकी निराकारी आत्मा जब बन जाती है पुरुषार्थ करते करते, तो वो शिव बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। क्या मैं कायम नहीं हूं? वो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्टधारी है। एक सेकंड भी कम नहीं। तो जो सदा इस सृष्टि पर कायम है, वो ही उसकी तुलना आत्माओं के बीच में कर सकते हो, मेरी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्माओं की तरह मैं इस चक्कर में आता ही नहीं। जो आता है या जो आत्माएं इस चक्र में आती है पार्ट बजाती है, उन आत्माओं के बीच जो परम पुरुष है, क्या वो ही वास्तव में परमात्मा भी है? परमात्मा, उस परमात्मा रूपी बीज में सारा संसार भरा हुआ है। जैसे बाप में परिवार का हरेक भांति कहां से निकला? बाप से निकला। वो हद के बाप होते हैं और ये बेहद का बाप है। मनुष्य शक्ति का साकार बाप है बेहद का, तो एक ही। और मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं का निराकार बाप है, तो वो भी एक ही। उसका भी कोई बाप का बाप नहीं, लेकिन वो निराकार, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बाप मनुष्य सृष्टि का, साकार मनुष्य सृष्टि में उसका कोई बाप नहीं। तो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो भी पुरुष है, नर है या नारी है? है? दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? बड़ा खुश हो रही है कन्याएं, तो बहुत खुश होती है। माता भी खुश होती है। क्यों खुश होती है? क्योंकि वो दुर्योधन दुशासनों ने हजारों साल से बहुत दुख दिया है। क्या इस नरक की दुनिया में कन्याओं माताओं को पुरुषों ने सबसे जास्ती दुख दिया है, तो इसलिए खुशी का मौसम आया है तो खुश होना चाहिए कि नहीं है? खुश होना चाहिए। तो वो नर है जो नरक बनाने वाला है। काहे से नरक बनाता है? इम्प्योरिटी से, विचार से। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और वो नर नहीं है लेकिन निराकार पुरुष है। क्या है? निराकार पुरुष है। उसमें निराकारी ज्ञान का सत्व भरा हुआ, सत्व। क्या वो नहीं नरक बनाता है? वो तो इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाने का रास्ता ही बताता है, नरक बनाने का रास्ता नहीं बनाता। लेकिन जो उस रास्ते को 100% सीखता है, समझता है, दूसरों को समझाता है, सुनाता है, वो व्यक्ति इस सृष्टि पर परम पुरुष प्रैक्टिकल में कहा जाता है। क्या? साकार शरीर धारण करने वालों में परम पुरुष कब? जब मेरे समान बन जाता है। पुरुषार्थी जीवन में नहीं, जब संपन्न बन जाता है 100% निराकारी निर्विकारी, तब बनता है। उससे पहले, उससे पहले है? हाँ, आप समान बने तो संपन्न बने, संपन्न बने तो फिर वो स्वयं ही नई सृष्टि रूपी मकान का उद्घाटन करने वाला बनता है। लेकिन कराता किसके द्वारा? कन्याओं माताओं के द्वारा कराता, खुद नहीं करता। स्वर्ग का गेट किसके द्वारा? हाँ, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए ज्ञान का कलश किसको देता? लक्ष्मी को देता या खुद सफल होकर दिखाता है? खुद तो विष पाई है, सफल हो ही नहीं सकता। तो बताया, उसमें इतना क्रोध भी भरा हुआ है। क्या? इतना क्रोध भयंकर भरा हुआ है कि वो भयंकर क्रोध धारण करता है अंदर और बाहर से, तो उसकी भ्रकुटी भी अगर टेढ़ी हो जाए, भ्रकुटी विलास भी हो जाए, तो भी सारी शक्ति खत्म हो सकती है। उसकी यादगार है क्या? ब्रूटान, जो भारत के उत्तर पूर्व देश में बसा हुआ है। वो दुनिया में एक ही देश है जहां आज भी प्रैक्टिकल में राजा की मान्यता है। क्या? प्रजा की मान्यता नहीं दी जाती। राजयोगी अव्वल नंबर का देश वो है यादगार। तो हम बच्चों को किसकी प्रजा बनना है? छोटे देश की प्रजा बनना है, सात्विक देश की प्रजा बनना है, जिस ओर से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है उस ओर की प्रजा बनना है, या पश्चिमी देशों की प्रजा बनना है? है, जहां से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है वहां की प्रजा हमको बनना है। प्रजा बनना है तो वहीं से प्रजा बनना है, नहीं तो राजा बनना। प्रजा का मतलब ये है, प्रकष्ट रूपेण जायते। प्रकष्ट माने बड़ी पावरफुल तरीके से, जायते माने जन्म लेने वाले। क्या? मनसा की संतान। ब्रह्मा ने कौन सी सृष्टि पैदा की? मनसा की सृष्टि पैदा की। अभी जो सृष्टि बन रही है वो शरीर से पैदा होने वाली सृष्टि बन रही है या मनसा के संकल्पों से बन रही है? शूटिंग में मनसा के श्रेष्ठ संकल्पों से अभी श्रेष्ठ सृष्टि बन रही है। इसलिए बाबा कहते हैं, हरेक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, ग्लानी करने वाला हो, क्या गाली देने वाला हो, क्या हरेक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का संकल्प भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति अशुभ भावना अशुभ कामना नहीं करनी, क्योंकि जैसा हम दूसरों को देंगे 63 जन्म हमें वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे, प्यार देंगे तो स्नेह प्यार मिलेगा। क्या? और घृणा देंगे तो हमको घृणा ही जन्म जन्मांतर मिलेगी। सहयोग देंगे तो दुश्मन को भी हम सहयोग देंगे तो क्या मिलेगा उससे? सहयोग मिलेगा। और उसके कार्यों में विघ्न डालेंगे तो हमारे कार्यों में भी, उसके बुरे कार्यों में विघ्न डालेंगे तो हम जहां बुरे कार्य करेंगे तो वो हमारा विघ्न जरूर डालेंगे। इसलिए बोला अपने हाथ में ला नहीं लेना है। क्या अखबार वाले भूं भूं करते हैं, ग्लानी करते हैं, गालियां देते हैं, क्या करना है? तुम कुछ ना करो, क्या कुछ करने की दरकार नहीं, वो जो करते हैं उन्हें करने दो। तुम विरोध मत करो, वो गलत काम करते हैं तुम मत विरोध करो। ला अपने हाथ में नहीं लेना। जानते हैं ना कौन आया हुआ है? भगवान बाप आया हुआ है। वो क्या कहता है? इस समय धर्मराज है मेरा राइट हैंड, कभी ये भी कहता है धर्मराज है मेरा लेफ्ट हैंड। क्या ब्रह्मा की आत्मा धर्म को धारण करने वाली धर्मराज की आत्मा है। वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जिसमें प्रवेश करती है उसके राज वो धर्मराज। ओम शांति। 17 तारीख हुई,
अभी शुरुआत हुआ था बाबा की। तीनों मूर्तियों में सहन मूर्ति कौन है करके उसका
है?
अभी शुरुआत किया था बाबा, तीनों मूर्ति में सहन मूर्ति कौन, सहनशाली कौन है? वो ब्रह्मा दादा लेकर ब्रह्मा नहीं है, और ये प्रजापिता ब्रह्मा क्या वो लड़के
कौन है? कौन है अम्मा?
परम ब्रह्म।
कौन है परम ब्रह्म तुम बता दो पहले।
नहीं, जिसमें शिव बाप बीज डाल, ज्ञान का बीज डालते हैं।
हाँ, तो एक ही तो है माता और एक ही तो पिता है।
हाँ, आत्मा का बाप और माता तो एक ही है, तो वही परम ब्रह्म सहनशीलता।
वो माता है,
वो पिता है।
वो कौन है जिसके सामने मंदिर में जाके कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव?
वही शिवलिंग साकार है, मनुष्य सृष्टि के बाप,
उसकी यादगार
शिवलिंग।
तो वो एक बताओ, वो कौन है?
जो शिव के लिए, शिव का आत्मा के बाप शिव के लिए माता बनता है और मनुष्य सृष्टि के लिए बाप बनता है।
शिव के लिए बाप बनता है, माता बनता है?
शिव के लिए माता बनता है,
शिव के लिए माता बनता है,
शिव का पत्नी बनकर।
वो तो एक ही है जो माता बनता है, पिता भी बनता है। उसी के सामने तो जाके कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, एक ही के सामने कहते हैं ना कि दो हैं?
एक ही है।
एक ही है। फिर
जो सहनशीलता तो उन्हीं को सबसे ज्यादा बोलेंगे। जो बात आए नी त्रिदेव में, सहनशीलता किसको होता है करके एक बात अभी शुरू हुआ ना बाबा।
हाँ।
तो उसका समाधान तो परम ब्रह्म। हाँ। वही समाधान है क्या?
उसका पार्ट किसने बजाया प्रैक्टिकल? माता का काम है पवित्रता, जिसमें प्रवेश किया उसने पुरुषार्थी जीवन में पवित्रता का पार्ट बजाया।
है?
पवित्रता से यूनिटी बनाई के यूनिटी को बना के भी तोड़ दिया।
यूनिटी तो बना रहा है ना, तो
यज्ञ के आदमी बनाई है? है? नहीं बनाई, टूट गई ना। 76 से बाप प्रत्यक्ष हुआ। मनुष्य आत्माओं का है या आत्माओं का बाप? मनुष्य आत्माओं का बाप नर। उसने यूनिटी बनाई, फिर क्या किया? फिर क्या करता है अंत में 40 साल के बाद? हैं? अरे
40 साल के बाद फिर क्या करता है? बिगाड़ता नहीं है? जब बिगाड़ता है, आदमी भी अकेला रह गया था, सारी दुनिया एक तरफ, एक आत्मा दूसरी तरफ, और 76 में भी क्या हुआ था? एक आत्मा एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में, और सारी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे बाद में वो ब्राह्मण आत्माएं भले एडवांस में आ जाएं, भले बीज रूप आत्माओं की दुनिया में ऐड हो जाएं, तो भी जिस समय वो बाप बाप के रूप में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76 में, वो अकेला था या कोई सहयोगी था? है अकेला है। अभी फिर 40 साल पूरे हो रहे हैं, अभी फिर वही संस्कार ब्राह्मण आत्माओं में जागृत हो रहे हैं। क्या बीज रूप आत्माओं में पहले पकड़ो, स्थापना और विनाश का कार्य पहले बीज रूप आत्माओं में होगा कि पहले जड़ रूप आधार मूर्त आत्माओं में होगा, या पत्तों पत्तों की 500 करोड़ दुनिया में होगा? तो क्या होने वाला है, है? कौन बचेगा? एक बचेगा, बाकी कोई सहयोगी नहीं बचेगा। जैसे 76 में कोई सहयोगी नहीं था, 42 में कोई सहयोगी नहीं था, कहा यज्ञ की हिस्ट्री क्या कहती है, क्या कहती है? कोई नहीं था, सब अपने अपने स्वरथ के कार्य में लगे हुए थे। क्या कार्य में लगे हुए थे? स्वरथ के पोषण में लगे हुए थे। पहले अपने रथ का प्यार, फिर रथ के संबंधियों का प्यार, यज्ञ के आदि में भी, मध्य में भी, और अंत में भी क्या होने वाला है? सब माया साबित करेगी, माया बेटी को ये काम मिला हुआ है। क्या निकालो इस दुनिया में अपने देवान को, राह कौन बनाते हैं, कितने बनाते हैं, नंबरवार वो भी देखेंगे। देह से भी प्यार नहीं, देह के संबंधियों से भी प्यार नहीं, एक का साथ निभाएंगे तब ये परीक्षा होगी। देह के पदार्थों से भी प्यार नहीं, समय देह के पोषण में नहीं, क्या देह के अर्थ नहीं, देह के संबंधियों के अर्थ नहीं, देह के पदार्थों के इकट्ठा करने के लिए नहीं, समय सारा किसके लिए देंगे? है उस ईश्वरीय ज्ञान के लिए जिसका नाम रखा गया क्या? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रौद्र रूप धारण करता है, उसके ज्ञान यज्ञ के पोषण के लिए तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ अर्पण करने वाले।
उसी बात को हम सहनशील तक कह सकते हैं, उसी बात को हम सहनशील तक कह सकते हैं, सब अर्पण किया था ना।
हाँ, तो ब्रह्मा भी नंबरवार हैं, विष्णु भी नंबरवार हैं, या एक जैसे हैं? अगर ब्रह्मा की भुजाएं बनते हैं तो नंबरवार भुजाएं बनेंगे, एक जैसी बनेंगे? कोई दाई ओर की भुजा बनेंगे, कोई बाई ओर की भुजा बनेंगे, कोई नीची भुजा बनेंगे, कोई ऊपर की भुजा बनेंगे, नंबरवार बनेंगे ना।
तो ऐसे ही है क्या नंबर में आने वाले क्या होगा चक्कर में भी उसी प्रकार आएंगे जो इस चक्र में पहले पहले आना शुरू करेगा सतयुग में वो कौन कोई है या नहीं कौन है वो चक्कर से पहले है कि चक्कर में जब शुरू होता है चक्र तब है
कृष्ण बच्चा
हाँ पहला पत्ता उसके बाद जो आएंगे तो बाद में जन्म लेंगे ना परमधाम से भी बाद में आएंगे ना और ज्ञान में भी बाद में लेकिन पहले पत्ते से भी पहले जिनका जन्म होगा अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेंगे वो है रुद्रमाला और वो रुद्रमाला में है 108 बच्चे राजा बनने वाले बाकी सब प्रजा नंबरवार प्रजा नंबरवार राजा हैं अब्बल नंबर के राजा हैं 8 क्या बाकी हैं 108 बाकी भी हैं जो राजयोग सीखते हैं कि नहीं कि 108 ही सीखते हैं 108 ही राजयोग सीखते हैं राजा बनते हैं कि और भी हैं हैं राजा बनते हैं अरे जो और सीखते हैं 108 के अलावा वो राजा बनते हैं
थोड़ा समय के लिए राजा बनते
हैं राजा बनते हैं अरे आज के प्रधानमंत्री हैं 5 साल के लिए राजा बनते हैं कोई तो 1 साल में ही खलास शास्त्री जी का क्या हुआ कोई तो महीने में ही खलास अल्पकाल के राजा बनते हैं ना तो वो राजाओं की लिस्ट में तो आए कंट्रोलर तो हैं लेकिन वो 108 ही हैं जो ईश्वरीय परिवार के भांति बनते हैं वो हैं 16,000 108 कितने 108 वो भांति भी हैं जैसे धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन दुशासन राजा ही करता था कि नहीं करता था है? तो राजा जैसा था या नहीं था कि नहीं ऐसे ही कंस राजा बनाया नहीं गया उसने भी नहीं बनाया था लेकिन क्या करता है यहाँ राजा ही खींच के ले लेता है कहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बोला है पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन के रहना है सुरक्षा गार्ड उनको गाइड नहीं करना है उनके ऊपर डायरेक्टर बन के नहीं बैठना है लेकिन बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं कि नहीं बेसिक में भी बैठते और यहाँ एडवांस में भी डायरेक्टर बन के डायरेक्टर सिर्फ नहीं बनते डांट भी लगाते हैं मुंह के सामने ही कन्याओं माताओं को गालियां देते हैं दूसरों के सामने ग्लानी करते हैं ऐसी है हरामजादी वैसी है हरामजादी उल्लू की पट्टी ये गार्ड बने कि गाइड किया है क्या किया गाइड किया ना डायरेक्टर बन के बैठ गए ना चलाने वाले बने ना कि डायरेक्शन पर चलने वाले बने भगवान बाप आते हैं सब कुछ कन्याओं माताओं को सौंपते हैं तुम चलाओ दुनिया को तुम्हें संभालना है, सारी दुनिया के ऊपर तुमको राज्य करना है, राज करेगा खालसा। क्या बोला, कौन राज्य करेगा? खालिस रहेगा, पवित्र रहेगा, वो ही राज्य करेगा। पहले पहले राज करेगा पवित्र बनकर, तो पहली पहली नई दुनिया में राज करेगा, फिर नई सो पुरानी तो होती ही है। तो शूटिंग पीरियड में नई पुरानी नहीं होती है, हैं? नई पुरानी, नई दुनिया जब पुरानी होती है तो उस पुरानी दुनिया में फिर वही बात, राज करेगा खालसा। पुरानी दुनिया में देह से अपवित्र, देह की इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, कर्म इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, भ्रष्ट इंद्रियों से अपवित्र होने की बात है, तो शूटिंग होगी कि नहीं? शूटिंग होती। तब कहना क्या चाहते हैं?
कहना चाहते हैं में पाठ कौन बजाता है?
अरे तो अभी समझ में नहीं आया, माता है तो कौन है, और एवरलास्टिंग पिता है तो कौन है, विनाश करने वाला है तो कौन है, और पवित्रता से स्थापना करने वाला है तो कौन सा बीज है? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के सवाय पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। तो कौन है ज्ञानी? और
ज्ञान
शुभ बाप जो ज्ञान देता है वो इस दुनिया में पवित्र है, सदाकाल कायम रहता है।
सदाकाल में रहने वाला तो शुभ बाप है, ज्ञान देने वाला शुभ बाप
है। देने वाला है ज्ञान का, रास्ता बताने वाला है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में करके दिखाता है?
नहीं, वो तो शिव बाबा है।
हैं?
तो शिव बाबा है।
शिव बाबा है, वो शिव बाबा स्थापना करने वाला है या नहीं है? है या नहीं
है?
कैसे? कैसे? अरे 500 करोड़ की दुनिया, 500-700 करोड़, 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी तो उस आत्मा के बीच वो आत्मा काले कृष्ण को देखेगी या गोरे को देखेगी? जो गायन है श्याम सुंदर, श्याम भी है और लास्ट में सुंदर भी है। हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ का जब अंत होगा, परिपूर्णता होगी, तो उसे सुंदर देखेगी। जब तक पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है तब तक निश्चय अनिश्चय के चक्र में आकर काला देखती रहेगी। तो 500-700-750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी, उसके सामने पहले पहले वो श्याम दिखाई देगी कि सुंदर दिखाई देगी? तो विनाश करने वाली हुई, कृष्ण काला है, कृष्ण काले काम करता है, तो भक्ति मार्ग में काला मोहड़ा दिखाया जाता है, राम को भी काला मुंह और कृष्ण को भी, और यहां तक कि शिव को भी काला लिंग दिखाई देते हैं, जगन्नाथ को काला, श्रीनाथ को काला, राम को काला, कृष्ण को काला, सब काले ही काले। अरे किसकी यादगार है? राम और कृष्ण एक में प्रवेश करते हैं ना, चोला तो एक है ना, तो वो पुरुषार्थ के अंतिम जो समय में, पुरुषार्थी जीवन के अंतिम जो समय में काले होते हैं कि गोरे होते हैं? काले होते हैं। तो श्याम फिर पुरुषार्थ संपन्न होता है तो गोरे। तो ये सृष्टि के मनुष्य जो हैं 500-700 करोड़, उसे प्रैक्टिकल में अंत तक काला रूप में देखेंगे या गोरे रूप में देखेंगे? है शारीरिक रूप से, शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए काला कर्म करते देखेंगे कि गोरा कर्म करते देखेंगे? चुप। काला कर्म करते देखेंगे तो इसलिए काले ही काले बना दिए। कृष्ण के मंदिर में चले जाओ काला कृष्ण, राम के मंदिर में चले जाओ काला राम, जगन्नाथ के मंदिर में चले जाओ काला, मोटी मोटी आंखों वाला काला भुजंग, श्रीनाथ के मंदिर में चले जाओ वहां भी काला, जहां जाओ वहां काला ही काला भक्ति मार्ग में दिखाई देता है। तो ये आंखें भक्तों को कहां से मिली जो काला ही काला दिखा दिया? जब सृष्टि का चैतन्य मनुष्य आत्माओं का अंत काल आया उस समय सब की आंखों में अंधकार भर गया था। क्या घोर अंधकार, महाशिवरात्रि, महान अज्ञान का अंधकार भर गया था। तो क्या दिखाई देता था? काला ही दिखाई देता।
जब संपन्न हो जाता है
बाबा, जब संपन्न हो जाएगी तो आत्मा कहाँ जाके बैठेगी? जो आत्मा निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएगी, देह को याद करेगी नहीं, देह की इंद्रियों को याद नहीं करेगी, देह की इंद्रियों से सुख नहीं भोगेगी, तो कहाँ बैठ जाएगी जाके? मन मना भव। कहाँ? जो कहने वाला है क्या कहने वाला? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या समाया हुआ है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, क्या समाया हुआ है? है वो ही ज्योतिर्लिंग।
तो उसको भी जो जो के जो सुने
जो, हाँ,
जो देखे जो सुने वो,
जो देखे जो सुने वो तब तक के लिए जब तक के पूरी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है।
मतलब पूरी दुनिया फिर वो संपन्न रूप को भी जानते हैं बाबा, संपन्न रूप भी देखते हैं ना?
नंबर वार या पहले पहले एक साथ?
नंबर वार
फिर खत्म बात।
सुंदर बात, शाम को जो लोग देखा 500-700 करोड़, वो संपन्न रूप को ही 500-700 करोड़,
जो पावन आठ है मान लो, आठ पावन बनेंगे ना, तो उसे किस रूप में देखेंगे? है उनको अनिश्चय तो नहीं आएगा? पावन दृष्टि होगी तो पावन ही देखने में आएगा। ऐसे ही नहीं कि जो पावन है वो भी पति देखने में आए, समझ जाएंगे ये नारियल है, जैसा दिखाई देता है वैसा रियल नहीं है, ये पतित नहीं है, देखने वालों की आंखों में चश्मा ऐसा चढ़ गया है, काला चश्मा, इसलिए अंधा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। कुछ चश्मा काला हट गया तो क्या दिखाई देगा? तो नंबर वार जाएंगे स्वर्ग में कि एक साथ आ जाएंगे? पहले आठ जाएंगे, फिर दूसरे धर्म के और ऐड हो जाएंगे, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 12 का 12 नेमा 108 का राजधानी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। एक भी पावरफुल तैयार होने पर ग्रुप एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 का राजधानी तैयार हो जाएगी। तो वो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, गोरा अनुभव करेंगे, लेकिन सारी एकदम। तो ऐसे ही 500-550 करोड़ नंबर वार हैं जो जीवन मुक्ति का इसी संगम युग में अनुभव करेंगे कि पुरुषों में उत्तम कौन है। बाकी स्थापनाकारी कौन? अरे नई दुनिया की स्थापना किसने की, निमित्त कौन? छोटी माँ लक्ष्मी माँ। छोटी माँ लक्ष्मी माँ आत्मा तो पावरफुल हुई, पावन बनी, और पांच तत्वों का शरीर पावन बन गया। अरे साढ़े 500 करोड़ आत्माएं पावन तो बनेंगी, पति तो बनेगी कि पावन बनेगी? पावन बनेगी, पावन बन करके पावन से जुड़ जाएंगी उनके शरीर। मान लो 1936 ही है, 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग है मान लो, तो आत्माएं पावन बनेगी या जड़ शरीर पावन बन जाएंगे? है? आत्मा पावन बनेगी ना, तो माताओं के गर्भ से आत्मा पैदा हो जाएगी। अरे शरीर पावन बनेगा तब आत्मा के साथ शरीर जन्म लेगा संसार नई दुनिया में, या पहले ही? शरीर भी पावन चाहिए, आत्मा भी, तो शरीर तो पावन नहीं बने, आत्माएं ही तो पावन बन करके मन मनाभव के साथ मिक्स हो गई, और शरीर, चलो बीज रूप आत्माएं हैं उनके भी शरीर तो पावन बन गए क्या? पतित हैं या पावन बन गए? हैं? क्या हैं? पतित हैं। तो पतित शरीर बर्फ में दबेंगे या नहीं दबेंगे? बर्फ में दबने के साथ ही पावन बन जाएंगे अपने आप? नहीं बनेंगे ना। तो पावन बनाने वाला फिर कौन? पावन तो शरीर के साथ कहेंगे कि बिना शरीर पावन बने शरीर पावन कहेंगे? है? अरे हाँ, बच्चा पैदा होता है, बाप बच्चा का बीज बोता है, तो जब बीज बोता है तो शरीर का बीज बोया या आत्मा का बीज बोया? पहले शरीर का पिंड तैयार होता है, फिर बाप का काम नहीं है, बाप है शरीरधारी तो उसने शरीर का बीज बो दिया क्या? लेकिन जो बाप है वो आत्मा का बाप नहीं है, है? वो आत्मा बाद में प्रवेश करती है कि पहले ही प्रवेश कर जाती? तो बर्फ में तो दबेंगे शरीर, लेकिन आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। आत्मा तब ही प्रवेश करेगी जब नंबरवार जो शरीर हैं वो पांच तत्वों के शरीर पावन बनते जाएंगे। शरीर पावन बनेंगे फिर उनमें आत्मा प्रवेश करेगी, पति पावन आत्मा। तो शरीरों को पावन बनाने वाला कौन? आत्माओं को पावन बनाया उसने आकर। अरे आत्माओं को किसने पावन बनाया, किसने रास्ता बताया? वो आत्माओं का बाप आता है तो आत्माओं को पावन बना करके रास्ता बताया साकार को, और साकार ने प्रैक्टिकल में वो रास्ते को जीवन में पकड़ा, और पहले पहले अपनी आत्मा और शरीर दोनों को पावन बना लिया। शरीर को पावन बनाया या नहीं बनाया पहले? हैं? अरे जो लिंग रूप है शरीर है, वो शरीर लिंग रूप पावन बनेगा या इंद्रियों का सुख लेता रहेगा? बस इंद्रियों का पावन बनेगा ना। 500, 700, 750 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान लास्ट में बनेगी ना, उसके बाद वो अपने शरीर से पावन बनेगा या नहीं? शरीरधारी मनुष्यों का बाप जब पावन बनेगा तभी तो पांच तत्वों को पावन बनाएगा। पांच तत्व ज्ञान से पावन बनेंगे, जड़ तत्व के प्यार से पावन बनेंगे। काय से पावन बनेंगे? प्यार से पावन बनेंगे। क्या जो जानवर होते हैं ना, उनकी बुद्धि में जड़त तो होता है या चैतन्यता होती है? शेर है, चीता है, टाइगर, उनकी आत्मा में आत्मीयता है? नहीं, नहीं है। तो जो आया सामने और चीड़ फाड़ के खा के अपना पेट पूर्ति की, क्योंकि जो चैतन्यता है, जो भावना है, वो है ही नहीं। लेकिन इतनी भावना तो जरूर है कि जानवर भी, पशु और पक्षी भी, कौन हमारा हितकारी है, कौन हमको दुखदाई है, हमेशा ये पहचान लेते। इसीलिए गाय ने शास्त्रों में कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी जब जाते थे, आश्रम में प्रवेश करते थे, तो एक ही घाट पर पानी पीते थे। वो ही शेर बकरी उनके आश्रम से बाहर जाते थे तो खूंखार बन जाते। ये किस बात का प्रभाव? वाइब्रेशन का। ऐसे ही है कि जड़त्वमय बुद्धि वाले जो प्राणी हैं, वो भी पावन बनेंगे। सचिव में शेर चीता नहीं होगा हिंसा करने वाला, सब सुंदर सुंदर प्राणी होंगे, पशु भी पक्षु भी। दुखदाई काटने वाले कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। लेकिन जो माता है वो भावनावादी होती है। क्या? कैसी होती है? भावनावादी नहीं कहेंगे, ये भावना नहीं है, यहाँ है भावना, दिल में है भावना, और ये है बुद्धि। माताएं होती हैं भावनावादी और पुरुष होते हैं बुद्धिवादी। तो जो बुद्धिवादी पुरुष हैं, वो भावनावादी माताओं के मुकाबले ज्ञानी कहे जाते हैं। क्या? ज्ञान है और माताओं में उतना ज्ञान, भावना प्रबल है। भगवान को क्या चाहिए? भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भावना को देखते हैं या बुद्धिवादी इब्राहिम वो क्या नाम वैज्ञानिकों को देखते हैं? किसको प्रेफरेंस देते हैं? भावनावादियों को प्रेफरेंस देते हैं। जो आज के वैज्ञानिक हैं बुद्धिवादी, उनको प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन बड़े से बड़ा विज्ञान भी वो सिखाता है। भी माने विशेष ज्ञान, माने ज्ञान विशेष ज्ञान है उसके पास। योग, योग क्या है? विशेष ज्ञान है। जो विशेष ज्ञान इस सृष्टि पर जब फैलेगा, तो ये जो वैज्ञानिक हैं हाथ उठा देंगे, त्राय माम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। क्या? इस शहर में बम फूटा, उस शहर में बम फूटा, वहां बम फूटा, वहां बम फूटा, ये नजदीक पाकिस्तान में कराची में बम फूटा, वहां खड़ी हो जाएगी। अब बस हमारा ही नंबर है, हे प्रभु अब हमको बचा। नास्तिक से नास्तिक होगा, वो भी अंत में क्या बन जाएगा? आस्तिक बन जाएगा, आस्था रखने वाला बन जाएगा। तो माता भी एक है वास्तव में और पिता भी एक है, लेकिन वो स्वयं अच्छा कार्य नहीं लेता है, अच्छा कार्य कन्याओं माताओं को सौंपता है। क्या? हाँ, तुम कन्याएं माताएं स्थापना का काम करो। हाँ, कोई कोई कन्याएं हैं जो पूतना और सुपनखा बनती है। पूतना माने विष का दूध पिलाती है, विष भरा दूध, विष भरा ज्ञान। सुपनखा जो खुद ही माया बेटी का पार्ट बजाती है, खुद ही भगवान पर आसक्त होती है और रावण के परिवार में जाकर के सभा में जाके बोलती है इन्होंने हमारी नाक कान काट ली, लड़ाई करवा देती है। तो लड़ाई कराने वाली को सुपनखा और विषपाई को पूतना कहा जाता है। ऐसी कन्याएं माताएं जो होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। क्या? बहुत थोड़ी। नई दुनिया में तो जाती हैं, लेकिन वहां उनका बहुत ऊंचा पद नहीं बनता। क्या? तो स्थापनाकारी माताएं भगवान से क्या लेती हैं? है? क्या लेती हैं? अरे महिमा लेती हैं। और भगवान उन्हें महिमा देता है, खुद क्या लेता है? है? भगवान आता है तो महिमा लेता है या ग्लानी लेता है? संसार की, संसार की ग्लानी खुद लेता है और माताओं को यशस्वी बनाता है। नाम ही है यशोदा, क्या देने वाली? यश देने वाली। कोई शारीरिक रूप से यश देती है, कोई आत्मिक रूप से यश देती है। क्या? अपने अपने कर्मों की थ्योरी अलग अलग है समझने की। है यश, यश नहीं जानते? यश माने अंग्रेजी में कहते हैं किसी को ग्लानी देना, उसका उल्टा क्या हुआ? महिमा माने वही यश है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
प्राइड।
हाँ, प्राइड। तो माताओं को प्राइड देता है, कन्याओं को प्राइड देता है और स्वयं संसार से भी प्राइड दिलाता है। क्या प्राइड? शिव शक्तियां। और खुद क्या लेता है? अंतिम जन्म जो है भगवान का क्या गाया हुआ है भक्ति मार्ग में? है कलंकीधर। स्वयं कलंक को धारण करता है, संसार के सारे कलंक अपने ऊपर ले लेता है। क्या? ओम शांति।